نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. آج ہم سورة النساء آیت نمبر 32 سے 47 تک کریں گے. دیکھتے ہیں تفسیر کو. آج ہم کافی اہم موضوعات کو ٹچ کریں گے. ایک تو عورتوں کے حوالے سے جو ویسٹ میں بہت یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام تو عورتوں کے اوپر بڑا جبر کرتا ہے اور ان کو مارنے کا کہتا ہے، اور وہ اس کے اوپر ہم بات دیکھیں گے کہ اگر کسی میاں بیوی بی کے درمیان کوئی ناچاکی ایسی حد سے بڑھ جائے تو کیا کرنا چاہیے. ہم دیکھیں گے کہ جب کسی کے پاس ہم نعمت دیکھیں تو تب کیا کرنا ہے، اور ہم بہت اہم آج یہ چیز دیکھیں گے کہ جنہوں نے اپنی زندگی بدلنی ہے. ہم سب چاہتے ہیں نا ہم پہلے سے بہتر ہوں، چاہے آپ ایک دفعہ قرآن پڑھ چکے ہیں، پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں، یا دو چار دفعہ پہلے الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں، تب بھی ہمارے اندر گنجائش ہے بہتری کی، تب بھی ہمیں اور آگے سے آگے اچھا ہونا ہے. تو جو اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے خود کو چینج کرنا ہے، کوئی چینج آنی چاہیے قرآن کو پڑھنے کے بعد، تو وہ چینج کے لیے ہم آج دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا انسٹرکشن دی ہیں. جو چینج وہ لوگ نہیں کہہ سکتے کہ جو پہلے بھی قرآن پڑھ چکے ہیں ہمارے اندر تو چینج آ چکی ہے، نہیں، پھر بھی امپروومنٹ کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے. اسی طرح ہم ریاکاری کو دیکھیں گے، بخل کو دیکھیں گے، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام عدل کیا ہے اور نظام قانون رحمت کیا ہے. اور ہم آج تیمم کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ تیمم کب کیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، کن حالات میں ہوگا. پھر اس کے بعد ہم اینڈ میں یہود کی کچھ باتیں پڑھیں گے کہ یہودیوں کو کیسے دعوت بھی دی گئی ہے اور کیسے ان کو ڈرایا بھی گیا، دھمکی بھی دی گئی ہے. تو یہ آج ہمارے موضوعات ہوں گے انشاءاللہ تعالی. پچھلے سبق میں جو ہم نے پڑھا تھا بہت اہم باتیں اس میں بھی ہم نے کور کی تھیں، مگر آخر میں جس پہ ہم نے اپنے کلاس کو مکمل کیا تھا وہ یہ تھی کہ ہم نے کبائر سے بچنا ہے. تو صغائر یہ نہیں ہے کہ ان کو ہم نے کرتے چلے جانا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صغائر بھی جب ڈھٹائی کے ساتھ کیے چلے جائے انسان تو وہ بھی کبائر بن جاتے ہیں. تو چھٹی نہیں مل گئی کہ صغیرہ کرتے جاؤ، کوئی بات نہیں، وہ تو کبیرہ بس نہ کرو، صغیرہ کی تو کوئی خیر ہے. تو سبع موبقات آپ کو پتہ ہیں کون سی ہیں؟ سبع موبقات یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے، اگر نہیں پتہ ہے تو پھر آپ تفسیر کھولیں، تفسیروں کی بھی ذرا زیارت کیا کیجئے، آپ بڑے ہو گئے ہیں تو تفسیریں کھولیں. سبع موبقات اپنے اپنے گروپس میں بتانے ہیں کہ کیا ہے، ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے سبع موبقات میں نہیں یہ بتاؤں گی، ٹھیک ہے. تو کبائر جو ہیں ان سے بچنا ہے، جو فرائض ہیں ان کو چھوڑنا، جو فرض ہم پر کر دی گئی ہیں چیزیں ان کو چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. تو فرائض کو چھوڑنا نہیں ہے، کبائر میں پڑھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو چھوٹے موٹے ادھر ادھر غلطیاں ہم سے ہوتی رہتی ہیں، چھوٹے موٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں صغیرہ، اللہ اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دے گا. مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے بی کیئرفل، کبائر میں نہ پڑھنا. اور میں نے آپ کو امام زہبی کی کتاب بھی بتائی تھی، آپ کو مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، وہ پوری ایک بک ہے اس کے اوپر، چھوٹی سی ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیے، اس کو لیں، خریدیں، آپ اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے، دوسروں کو تحفے بھی دیں، اور یہ سات آیت بتا کے تحفے میں دیں کہ کبائر سے ہمیں بچنا ہے. تو آج ہم شروع کرتے ہیں بات کس چیز سے، دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تتمنوا، اور نہ تم تمنا کرو، ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اس کی جو اللہ نے فضیلت دی تمہیں سے بعض کو بعض پر. یعنی آپ اس دنیا میں دیکھتے ہیں نا، ہر انسان کو دوسرے کے اوپر किसी ना किसी चीज में कोई फजीलत हासिल है। मसलन कोई स्ट्रांग बहुत है, कोई मालदार बहुत है, कोई खूबसूरत बहुत है, किसी को रिश्ते बहुत अच्छे मिले हुए हैं, रिश्तेदार उसके बहुत अच्छे हैं, किसी के अंदर नेकी बहुत है, कोई किसी के अंदर खूबी है, कोई किसी में है, कोई किसी को किसी चीज में फजीलत मिली हुई है, किसी को किसी चीज में मिली हुई है। तो ऐसे में तुम उस चीज की तमन्ना ना करो जो अल्लाह ने फजीलत दी बाज को। बाज के ऊपर आप देखते हैं कि बाज को फजीलत मिली हुई है, तो आप भी हसरत करके तमन्ना करने लगते हैं कि हाय इसके पास ये क्यों और मेरे पास होना चाहिए था। ये नहीं करो। इसके पीछे, इसके शाने नजूल में एक बात है, वो पहले आपको बता देती हूँ, फिर आपको और भी ज्यादा समझ आएगी इंशाल्लाह ताला। देखिए अभी ये सारे जो सुभान अल्लाह ये आयतें अभी आपके सामने जहन में होंगी कि इनका क्या क्या आज कुरान हमें सिखाता है, लेकिन आप सोचें कि चंद ही घंटों में आपको कितनी सारी चीजें पता चल जाएंगी, कितनी सारी समझ आ जाएगी, कितने टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके जहन में इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल इतने क्लियर कि आप किसी को बताने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो हजरत उम्मे सलेमा ने एक दफा कहा, या रसूल अल्लाह, आदमी जो होते हैं वो जिहाद करते हैं, हम इस सवाब से महरूम हैं क्योंकि हम औरतें हैं, इस तरह मीरास में भी हमें बनिस्बत मर्दों के आधा मिलता है। इस पर यह आयत उतरी। इसी तरह एक और रिवायत आती है कि मर्दों ने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहा कि जब विरासत में हमें डबल मिलता है तो हमें अजर में भी डबल मिलना चाहिए ना, अजर हमें डबल क्यों नहीं मिलता। और औरतों ने दरख्वास्त की कि जब हम जिहाद हमारे पर फर्ज नहीं है, हमें शहादत का सवाब भी नहीं मिल पाता, तो फिर मतलब हमारे लिए फिर क्या हुआ ना। जैसे आज भी बहुत सारी औरतें पूछती हैं ये क्या बात हुई, हम तो जुमा पढ़ने नहीं जा सकते, मस्जिद में जाके पढ़ने का 27 गुना ज्यादा अजर है घर में पढ़ने से मर्दों के लिए, तो हमें इससे महरूम किया गया, अब हम क्या करें, इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं कि हम औरत हैं और ऐसे वैसे। तो इसी तरह उस वक्त में उन लोगों ने भी पूछा था, और आज दुनिया में भी ऐसा है कि औरतों को कई जगहों पर ये फैक्ट है कि औरतों को पे कम दी जाती है मर्दों से, मर्द वही जॉब करें तो उसकी पे ज्यादा है, औरत की पे कम है। अल्लाह ताला के यहाँ ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने यहाँ पे समझा दिया है कि जो मकाम मर्तबा अल्लाह ताला ने किसी को दिया है ना, बाज को बाज पे कोई दर्जा दे दिया है, कोई मकाम दे दिया है, किसी को माँ बाप बना दिया, किसी को मर्द बनाया, किसी को औरत बनाया, किसी को औलाद बनाया, किसी को माँ बाप बनाया, किसी को बहन बनाया, किसी को भाई बनाया, किसी को उस्ताद बनाया, किसी को शागिर्द बनाया, तो ये जो है ये किसी को किसी के ऊपर अगर फजीलत मिली भी है तो इसके ऊपर तुम अपने अंदर घुटन महसूस करके और इस चीज की तमन्ना ही करना या हसद करना या हिर्स करना, लालच हविस में पड़ जाना, ये नहीं, ये सही नहीं है। तुम ना ऐसी तमन्ना करो, यानी किसी को कोई भी किसी की अच्छी क्वालिटी देखकर आप हसद में मुब्तला ना हो कि इसको क्यों मिल गई, इसके पास मसलन किसी के पास औलाद है, किसी को अल्लाह ने नहीं औलाद दी भी, तो अब ये वो करने लगे कि हाय इनके पास क्यों है, इसके बच्चे अच्छे क्यों निकल गए, इसको अच्छा रिश्ता क्यों मिल गया, इसका घर अच्छा क्यों है, इसको इतनी बड़ी जॉब कैसे मिल गई, ये बड़ी तरक्कियां कर रहे हैं। हालांकि हर नेमत के साथ आजमाइश है, हर नेमत के साथ, अगर कोई वालदैन है तो उनके पास अपनी आजमाइशें हैं, अगर कोई शादीशुदा है तो उसकी अपनी आजमाइशें हैं, अगर कोई मर्द है तो अपनी आजमाइश है, औरत है तो उसकी अपनी आजमाइश है, किसी के पास पैसा ज्यादा है तो उसकी आजमाइश भी उतनी ही बड़ी है, घर बड़ा है तो उस तरह से आजमाइश है। हम ये नहीं सोचते हैं, हम फौरन हसद करने लगते हैं, फौरन किसी को देखकर जल बुन जाते हैं। आप कई हमारे मुल्कों में लोग हैं कहते हैं आए ये बड़े खुशकिस्मत हैं, देखो ना अमेरिका में रहते हैं इनके तो मजे हैं, देखो कैसे अब जो वहां यहाँ रहने वाले लोग हैं उनके अपने तरह के मसाइल हैं, अपने तरह के मसले हैं, अपने तरह के चैलेंजेस हैं। तो किसी को देखकर आजकल तो बहुत आसान है ना कि लोग किसी को मिले नहीं भी होते तो तब भी देख के जल भुन जाते हैं, फेसबुक है ये है वो है चीजें, उनके ऊपर उनके स्टेटस पढ़ के वो किधर जा रहे हैं, किधर घूम रहे हैं, कितने मजे कर रहे हैं, इनके तो मजे हो गए, इन्होंने तो इतना बना लिया, ये तो कामयाब हो गए, हम पीछे रह गए, हाय हाय बाय बाय करने लगते हैं। तो ये दुरुस्त नहीं है, इससे मना किया गया है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकर रिदा बाद अल कदा, अल्लाह मुझे राजी कर देना अपने फैसलों पर, राजी होने की तौफीक दे देना कि मैं तकदीर पे राजी हूं, जो फैसले तूने मेरे लिए कर दिए मैं उनको कबूल कर लूं। मत तमन्ना करो इस तरह की, मतलब तमन्ना से मतलब ये है कि यानी इंसान जेलस होके, इंसान दूसरे की चीज को देखकर अब उसको चैन नहीं आ रहा, अब अंदर एक जलन घुटन हो रही है। और बाज दफा ये हमारी खुद की क्रिएटेड भी होती हैं, क्योंकि एक बाज अपने अंदर से ही निकलती हैं, बाज दफा इर्द गिर्द वाले एहसास दिला दिला के, देखा फलाने के तो बच्चे किधर निकल गए, आपने क्या बनाया, क्या हो गया आपका, हाय आप तो बेचारे रह गए। हम बच्चों को बाज दफा इतनी मिसालें देते हैं, वो देखो तुम्हारा दोस्त, वो देखो कैसे पढ़ता है, वो देखो कैसे करता है, और तुम क्या रह गए, तुम अपनी हालत देखो। तो इस तरह कह कह के इसी तरह चौहर बीवी को कहता है, फलाने की बीवी देखो कैसी है, तो तुम कैसी हो, तुम बिल्कुल फोड़, तुम बिल्कुल ऐसे। अब वो क्या एक नेचुरल बात होगी, हसद पैदा होने लगेगा, एक दुश्मनी सी हो जाएगी, दिल करेगा उससे ये चीज छिन जाए, मुझे मिले ना मिले, लेकिन उसकी तकलीफ के ऊपर खुशी होने लगी कि अच्छा हुआ ना इनके साथ ऐसा हुआ, अच्छा हुआ इनकी नुकसान हुआ इनके कारोबार में, अच्छा हुआ इसको ये परेशानी लगी। अब तो ये बाज दफा इर्द गिर्द वालों को भी इस तरह कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए। बाज दफा औरतें बहुओं के दरमियान कंपैरिजन करने लगती हैं, और एक को कहती हैं देखो दूसरी कितनी अच्छी है, उससे उसके दिल के अंदर दूसरी के लिए हसद पैदा होगा। तो नहीं, अगर वो अच्छी है तो अल्लाह का फजल है उसके ऊपर, ये समझे ना। किसी को भी कोई चीज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मिली हुई है, चाहे वो माल की सूरत में, चाहे कोई खूबी है, ये उसका कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ने उसको अता की है, अल्लाह ने वो फजल दिया। अल्लाह ने क्यों फजल दे दिया, हम इसके ऊपर सोचने बैठ जाएं और इसके ऊपर बड़े परेशान हो जाएं, क्यों अल्लाह ने ऐसा किया ना? इसलिए कि अल्लाह ने इस दुनिया का निजाम चलाना है, इस दुनिया में किसी को किसी के लिए आजमाइश बनाना है, किसी को नेमत दे के उसको अल्लाह ने आजमाना है। इसी तरह अल्लाह ने किसी को अमीर बनाया तो एक को गरीब बनाया, अगर सारों को ही एक जैसा बना देता इस दुनिया का निजाम कैसे चलता, सब तख्तों पे बैठ जाते, काम करने वाले कौन होते, किसी को कोई चीज दी, किसी को कोई चीज नहीं दी, किसी को कमी करके दी, किसी को ज्यादा करके दे दी। इसका मतलब ये नहीं अल्लाह उससे बहुत राजी है, बहुत खुश है, इसका मतलब ये अल्लाह ने किसी को आजमाइश में डाला उसके जरिए, किसी को नहीं आजमाया। देखिए आजमाइश ही है ना, अगर अब बड़ा घर है तो आजमाइश है, बड़ी गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, आजमाइश है, अल्लाह ताला उसके जरिए देखता है अभी करता क्या है। तो तुम उस तरह से करके देखो, वो कहते हैं ना इंग्लिश का मुहावरा है, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड, हम हमेशा दूसरे को देख के सोचते हैं बस ये बड़े अच्छे रह गए, हाय हाय हम मर गए, लुट गए, फलां हो गए, हमारे पास कुछ नहीं, हाय हम तो नाकाम ही हैं। तो ऑलवेज हमारा इस तरह से होता है, कभी हम उन पे नहीं राजी होते जो हमारे पास अल्लाह ने हमें दिया, वो तो भूल ही जाता है ना, अपना हमेशा वही लगता है कि मेरे पास क्या है, हमारा तो कुछ भी नहीं। तो दूसरों की लगती है कि उनके बॉस, आपको क्या पता उसके साथ क्या चैलेंजेस हैं, आपको क्या पता उसके साथ और कौन से मसले लगे हुए, अगर अल्लाह ने उसको एक चीज में बढ़ाया हुआ तो दूसरी में अल्लाह ने हो सकता है उसकी रस्सी को खींचा हो, लेकिन हमें वो खुशकिस्मत लगते हैं और अपने आप को सोचते हैं बड़े ही हम बदकिस्मत हैं। तो अल्लाह ताला ने इसे मना किया है, ऐसे मत करो, आप नहीं जानते हो, ये अल्लाह ताला हमें समझा रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं। देखें जब हम ऐसे करते हैं तो होता क्या है, हसद, रकाबत, उससे हमारी नेकियां जल जाती हैं हसद से, अरे इसको ये मिल गया, कोई मिसाल के तौर पे कोई फोन करके आपको बताती है, कोई टेक्स्ट करती है, जी मेरे बेटे को फलां जगह एडमिशन मिल गया, या मुझे हमें इतनी मेरे हस्बैंड को बड़ी तरक्की मिल गई, या हमने तो अपना घर फलां जगह पे ले लिया। अब आपको ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या दिल ही घट गया, दिल ऐसे यानी बिल्कुल जैसे दिल बैठ गया होता है ना उस तरह से होने लगा। समझ जाया करें कि ये अंदर हसद पैदा, कोई मानेगा नहीं कि नहीं मैं किसी से हसद कर रही हूँ, अब हर एक ने कहना नहीं जो हम तो कुछ भी नहीं करते, हम क्यों हसद करेंगे, हम तो बड़े अच्छे हैं, नहीं अंदर हसद आता है इंसान के। इंसान जब ऐसे होता है ना कि आप किसी की चीज देखते हैं, सुनते हैं किसी की न्यूज, और साथ ही आपके दिल में ही होता है, इतनी भी नहीं है, देखो ना अगर घर ले लिया फलां चीज बिल्कुल बेकार थी, वो तो ऐसे है, इसका मतलब अंदर हसद आ रहा है। और इंसान फिर परेशान रहने लगता है, फ्रस्ट्रेट होता है, दूसरे के लिए खैर ख्वाही नहीं रहती दिल के अंदर, ये सब चीजें, इतनी सारी बीमारियां उसको लग जाती है, क्योंकि उसको डिप्रेशन होने लगता है, अल्लाह ने ये मना करके ना मेरे और आपके साथ खैरख्वाही की है। अल्लाह का हर हुक्म में हमारी खैरख्वाही, हमारी भलाई है। मत जलो भुनो, मत दूसरों की चीजें देख देख के कहो हाय क्यों उसको मिल गया, हाय कैसे। कुछ भी किसी को मिल जाए ना, ये चीज अपने अंदर से हमने निकालनी है। सोचा करें जिस वक्त आपको ऐसी परेशानी होने लगे ना, इसको क्यों मिल गया, आए किसी की चीज देख के एकदम फौरन इस आयत को याद करें, फौरन सोचे नहीं अल्लाह ताला ने फरमाया वला ततमन्ना, और क्या करो उसकी जगह, कहो माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्ला बारक अल्लाहु फी, अल्लाह से उसके लिए बरकत की दुआ करो। बाज औरतें कहती काश हम मर्द होते। अब आप मर्द होती तो आपको पता नहीं है कि आपके पास कितनी आपके ऊपर जिम्मेदारियां किस किस्म की होती, आप उनको उठा सकती कि नहीं। तो इसलिए इस चीज से मना कर दिया गया। और क्यों अपने आप को परेशान करते हैं, रातों की नींदें उड़ जाती हैं, बीपी हाई रहने लगता है इंसान पर, बाज दफा तो इतना हद से बढ़ जाते हैं, जादू टूनों में चले जाते हैं कि जादू करा के इनको जो है ना कि ये चीज बस इनसे दूर हो जाए, उसकी उसकी बुराई उसके साथ कुछ हो जाए, उसका कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो अंदर अंदर ना खुशी सी होती है कि अच्छा हुआ। कितनी कभी बातें हैं ना ये, कितनी गंदी बातें हैं, इनसे हमने अपने आप को पाक करना है। ठीक है ना, करेंगे ना इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया ले रे जानी नसीबों में मकता सबू वो निसाई नसीबों में मकता सब, मर्दों के लिए वो है खास बात, मर्दों और औरतों की वो लेकर आए ना क्वेश्चन के हमें तो ज्यादा मिलना चाहिए। वो कहती हमें हम क्यों महरूम रह गए, ना हमें शहादत मिलती ना हम जिहाद पे जाती, हमारा क्या कसूर है, हमारे पर भी कर दिया जाता हम भी नहीं चली जाती और हम भी इतने अजर पा लेती। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जो एक हिस्सा अल्लाह ने उसके लिए रखा जो उसकी कमाई है, जो उसने कमाया वो उसके लिए जो उसने कमाया, यानी मर्द औरत के दरमियान मुकाबले ना करो, बल्कि मर्द कोई नेकी करेगा उसको उसके मुताबिक अजर मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि नमाज, मिसाल के तौर पे नमाज मर्द ने पढ़ी तो चूंकि मर्द ने पढ़ी है इसलिए उसको ज्यादा अजर मिल रहा है, औरत ने भी उसी जगह पे नमाज पढ़ी, औरत ने पढ़ी है इसलिए उसको कम मिल रहा है, ऐसा नहीं है। तहज्जुद में दोनों खड़े में, लेकिन चूंकि वो मर्द है इसलिए उसको ज्यादा मिलना चाहिए, और ये औरत है इसको कम मिलना चाहिए, ये सेकेंड ग्रेड सिटीजन है, ऐसा नहीं है। रोजा रखा मर्द ने औरत ने, दोनों का एक बराबर अजर है तो दोनों के लिए उनके अपने अपने फील्ड ऑफ वर्क है ना उसके मुताबिक उनके लिए अजर। आप देखें बाज जगहों पे औरतें बहुत कमा लेती हैं, अब मिसाल के तौर पे औरत जो बच्चा पैदा करते हुए जो तकलीफ बर्दाश्त करती है उस पे उसको बहुत बड़ा अजर मिलता है। अब मर्द का है लो ये क्या बात हुई, हम तो इससे महरूम हो गए। तो कई चीजें अल्लाह ने औरतों के साथ खास करी है, वो उस फील्ड के अंदर अपना कमाई करके उसके अंदर अपना अच्छा कमा सकती हैं और ज्यादा अजर पा सकती हैं। कई फील्ड है मर्दों के लिए रखे, अब जब मस्जिदों में जाके नमाजें पढ़ना, कस्बे हलाल कमाना, हलाल रोजी कमा के लाना, उसके अंदर उनको अजर मिल रहा है, वो मेहनत कर रहे हैं अपने बाल बच्चों का पेट पालने के लिए, मजदूरी करते हैं, सुबह से जाते हैं शाम को आते हैं, उसके ऊपर उसको अजर मिल रहा है। औरत कहे मैंने मुझे तो ये अजर नहीं मिल रहा, मैंने भी बाहर निकलना है और जाके कमाई करनी है और फिर मैंने भी वो अजर पाना। नहीं, तुम्हें तुम्हारे लिए घर के लिए अल्लाह ताला ने जिम्मेदारियां दी, तुम उसमें अजर कमा सकती हो। ये हदीस अब आती है ना कि जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, रमजान के रोजे रखती है, अपनी इज्जत की हिफाजत करती है और अपने खामिद की फरमाबरदारी करती है उस पर जन्नत वाजिब हो गई। अब ये और आदमी का है, ये क्या बात हुई, ये घर में रहती हैं इनको क्यों इस तरह की मिल रही है। अब ये पैकेज आदमियों के लिए नहीं है, वो उनके लिए अलग पैकेज ऑफर हुआ हुआ है, औरतों का पैकेज अपना है क्योंकि उनके मुताबिक है, उनका फील्ड ऑफ वर्क है उसके मुताबिक उनको पैकेज दिया गया, मर्दों का अपना फील्ड ऑफ वर्क है उनके मुताबिक पैकेज दिया गया। जब फील्ड ऑफ वर्क ही डिफरेंट है, दायरा कार ही अलग है दोनों का, तो उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने उनके अजर भी रखे ना, उनके रिवॉर्ड्स उसके मुताबिक रखे। अब ये ना तमन्ना करो मर्द कहे हम औरतें क्यों नहीं बन गए, हम भी घर में रहते और ऐश करते, औरतें कहे हम मर्द क्यों नहीं बन गए। औरत को देखो बताया गया कि हज, हज को फरमाया ये औरत का जिहाद है, औरत जब हज पे जाती है वो जिहाद का भी अजर पाती है, हज का भी पाती, सुभान अल्लाह। तो ये गलत बातें ना कि देखो इस्लाम में औरतों को नहीं देखो कुछ है और आदमियों को कितना वो है, और इस तरह के प्रोपोगंडा करके औरतों को बदजन किया जाता है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने दोनों को अलग अलग बनाया ना, तो तो उनके जो फील्ड है वो अपने फील्ड में एक्सेल करेगा, उसको उसका अजर मिलेगा, जो उसने कमाई की उसके मुताबिक, उस तो औरत ने जो कमाई करेगी उसके मुताबिक उसका अजर हो। तो उसको फायदा नहीं मिल रहा कि उसको मर्द होने की वजह से कोई बर्तरी मिल रही होती, फिर आप जरूर कहती कि हाँ भाई ये क्या बात हुई, इज जस्ट बिकॉज वो मर्द है इसलिए उसको मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको कोई कम नहीं दिया गया, आपको भी उसके मुताबिक ही दिया गया। ठीक है, बस अल्लाह मिन फदली। अगर किसी की चीज देखे ना आप, कोई किसी के पास कुछ है ऐसी चीज, कोई कोई फजल अल्लाह का उसके पास देखते हैं आप, तो उसमें बस अल्लाह, अल्लाह से सवाल करो, उससे जलो भुनो नहीं कि इनको क्यों मिल गया, इन्होंने क्यों इतना बना लिया, ये क्यों कामयाब हो गए, इनके पास इतना कुछ क्यों है। तुम भी अल्लाह से सवाल कर लो ना। तो इसका मतलब है जब किसी की चीज देखें तो अगर नेगेटिव दिल के अंदर ख्यालात आ रहे हैं ना कि उन्हें इनके बच्चे भी सेट हो गए, इन्होंने इतना बना भी लिया, मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारा क्या, तो उसी वक्त फौरन सोचो इसको किसने दिया, किसने दिया उसको, अल्लाह ने, अल्लाह मुझे भी तो दे सकता है, तो अल्लाह से सवाल कर लो, अल्लाह से मांग लो। इन अल्लाह कहना भी कुल्ली शाइन अलीमा, अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाला है, किसको कितना देना है, किसको किससे महरूम रखना है, कौन कितना बोझ उठा सकता है, कौन नहीं उठा सकता, किसको क्या बनाना है, किसकी किसके ऊपर कौन सी जिम्मेदारी डालनी है, किसको किस चीज से आजमाना है, अल्लाह को सब पता है। ठीक, अब क्या सीख लिया इससे, अब इतनी सारी चीजें सीखने की आती है ना। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक डायरी में एक जगह अलग से ये बातें लिखने की, क्या मैंने करना है, अपने एम्स लिखे ना, जो चेंज लानी है ना अपने अंदर, कुरान पढ़ने के बाद जब चेंज आनी है तो फिर वो तो बातें ही भूलती जा रही है, करना क्या है और क्या चीज नहीं करनी, तो उसमें लिख लें वला ततमन्नौ वाली आयत का थोड़ा सा शुरू का पार्ट लिखें, आयत नंबर लिखें 32 सूरत निसा, इसके बाद से मैंने किसी चीज को देख के हसद करना ही नहीं, हसरतें नहीं करनी, और दिल में आहें नहीं, आहें भरते हुए आंसू निकल आते हैं, हाय क्यों ऐसा हो गया, इसको क्यों मिल गया, इनके बच्चे क्यों अच्छे निकल आए, इनके क्यों ऐसी ये सब, ये इसको सोच सोच के डिप्रेस मैंने नहीं होना। ठीक है, अच्छा अब आयत नंबर 33 देखते हैं, वाले कुल्लिन जहलना मवालिया मिम्मा तरकल वालिदानी वल अकरबून, वास्ते हर एक के हमने बना बना दिए वारिस उसमें से जो छोड़ा वालदेन ने और रिश्तेदारों ने, जो कुछ भी रिश्तेदार छोड़ते हैं या वालदेन छोड़ते हैं उनमें अल्लाह ताला ने वारिस बना दिए। मैंने आपको बताया मवाली क्या होता है, दोस्त भी होता है, आजाद करता गुलाम भी होता है, चचा आजाद भी होता है, वारिस है, ये सारे मतलब वली से निकला हुआ ना, तो ये सारे इसके माने हैं, यहाँ पे वारिस का माना है, यानी अल्लाह ताला ने वारिस मुकरर कर दिए हुए हैं, अल्लाह ने बता दिए हुए हैं कि कौन किसका वारिस है, वालदेन के वारिस कौन बनेंगे, रिश्तेदारों के वारिस कौन बनेंगे, ये सब किसने बता दिया। अब आपको नहीं अपने पीछे लिख के जाने की जरूरत कि मेरे फलां फलां वारिस है, इस्लाम ने बता दिए वारिस। ठीक है, वल्लदीना अकदत अईमानुकुम फआतूहुम नसीबहुम, और वो लोग जिनके गिरा बांधी तुम्हारे दाहिने हाथों ने, यानी हलीफ बना लिया उनको, कसम खा के, पुराने जमाने में ऐसा होता था अरबों में कि वो कसम खा के किसी को अपना हलीफ बना लेते थे, यानी ऐसे समझ लें कि पक्का भाई बना लेते थे, अब उसके बाद तुम्हारा जीना मेरा जीना, तुम्हारा मरना मेरा मरना, यानी वो बिल्कुल कसमें खा के हम दोनों एक हैं, और जब एक मर जाएगा तो उसका जो वारिस है वो उसका ये जो जो उसका हलीफ है वो उसका वारिस भी बनेगा, यानी इतने वो पक्के आपस के अंदर, एक तो अल्लाह ने खूनी रिश्ते रखे हैं ना, एक ये वो खुद यानी हलीफ बना के हल्फ लेकर तो दूसरे को अपना ऐसे वारिस भी बना लेते थे और इतने ज्यादा उससे क्लोज हो जाते थे। तो इस चीज को फिर बाद में मंसूख कर दिया गया, ठीक है, इस हिस्से को मंसूख कर दिया गया क्योंकि अब अल्लाह ताला ने वारिस बना दिए, अब इस आयत के मुताबिक हलीफ फिर वारिस नहीं है, तो अफातुम नसीबहुम कहा गया था कि उनको उनका हिस्सा दो क्योंकि तुमने उनको अपना अपना अकद करके, यानी गिरा बांध के, उनको हलीफ बना के तुमने अब उनको अपना वारिस कहा है, तो अब तुम उनको हिस्सा दोगे। बाज ने कहा है कि इससे मुराद दौरे जाहिलियत के वो सारे मुआहिदे हैं जो कोई एक कबीला दूसरे कबीले को मवाली बना लेता था, यानी कहता था कि ये विरासत में हमारे रिश्तेदार हैं, हिस्सेदार हैं, सॉरी रिश्तेदार नहीं, हिस्सेदार हैं, तो इसमें वो सारे मुआहिदे आ गए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदा मुआखात कराया था ना जब मदीना आए थे, तो वो भी उसमें भी ये था कि दो भाई बन गए। अब वो जो भाई भाई बने तो वो एक दूसरे की विरासत के भी मालिक होंगे अगर एक उनमें से मर जाएगा, लेकिन बाद में ये मंसूख कर दिया गया। सूरह अनफाल की आयत नंबर 75 आ गई जिसमें बता दिया गया कि अब बस जो रिश्तेदार हैं वो ही, जो खूनी रिश्ते हैं वो ही हकदार है विरासत के। अब ये कोई किसी को एडॉप्ट करके उसको वारिस नहीं अपना बना सकता कि किसने बच्चा एडॉप्ट किया तो वो कहता है कि अब ये मेरा वारिस बनेगा, नहीं वो एडॉप्शन से नहीं हो सकता, वो उसी खूनी रिश्ते सिर्फ वारिस बनेंगे। हाँ ये हो सकता है कि कोई अपनी वसीयत के अंदर ये कर जाए कि वसीयत में से दे दे अपने जो हलीफ है उसको, अब तो हलीफ कोई होता ही नहीं है, लेकिन चलो अपने दोस्तों को दे सकता है या अपने मुंह बेले बच्चे को दे सकता है कुछ भी, तो वो स्टिल इट रिमेन्स, लेकिन वैसे जायदाद में से विरासत में से हिस्सा नहीं मिलेगा इनको। इन अल्लाह क्या ना अला कुल्ली शैइन शहीदा, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पे खुद गवाह है, वो देख रहा है, उसको पता है कौन कहाँ ज्यादतियां करता है, कौन कहता है नहीं जी मैं ये तो नहीं मानती, मेरा दिल करता है कि मैं अपने बच्चे को फलां को इतना दूं और फलां नाफरमान है उसको ना दूं। लिकुल्लिन जालना मवालिया, अल्लाह ताला ने फरमाया हमने बना दिए वारिस, और कौन किसको महरूम करना चाहता है आग करके, उसको कुछ भी नहीं देना चाहता है, या किसी को ज्यादा देना चाहता है, या इन अहकामात को तोड़ना चाहता है, अपनी अकलों को ज्यादा समझता है, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। अब आ गई है वो आयत जो बड़ी मशहूर आयत है और जिससे लोगों में ये गलत फहमियां हुई कि पता नहीं इस्लाम औरतों को हकूक नहीं देता, या इस्लाम में औरतों के ऊपर कितना जुल्म होता है, कितनी उनके ऊपर मार पीट उनकी होती है, या क्या होता है, और इसकी वजह से इस आयत को आप देखेंगे बहुत ज्यादा कोट होती है ये आयत, तो इसको आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इसकी बेस पे इस आयत को लेकर आते हैं, कोट करते हैं और कहते हैं ये देखो जी आपके कुरान में ये है, समझाए। और इसी को ये इतनी मशहूर हो चुकी है ना, मुसलमान मर्दों में भी बहुत ये मशहूर होती है कि देख लो जी इस्लाम ने तो हमें कहा है कि हम जैसे मारें भी औरतों को और जो भी मर्जी करें, तो देखो जी कुरान कहता है ये, तो आज हम इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला हमें समझने की सीखने की तौफीक अता फरमाए। अर्रिजालु कव्वामून अल निसा, सबसे पहली बात यह कि रिजाल जो हैं, मर्द जो हैं, कव्वाम हैं औरतों पर। कव्वाम मैंने आपको जैसे कि बताया, कव्वाम का माना कायम होने से है, यानी खड़े होना से उसका मुबालगे का सीगा है, यानी मर्द को मुहाफिज बनाया, मुआविन बनाया, हिफाजत निगेबानी करने वाला, जरूरियात का ख्याल रखने वाला, जो पूरी ताकत से खड़ा हो। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने कव्वाम बनाया, निगरान बनाया, मुंतजिम बनाया, जैसे किसी भी इदारे का निगरान होता है ना, जो उसको जो उसका सारा इंतजाम संभालने वाला होता है, ठीक है, निगरानी करता है ना, और निगरान से आपको पता है मसूलियत भी होती है, अगर कोई गड़बड़ होती है उस इदारे में, कोई कुछ होता है, तो उस मैनेजर को जाके पकड़ा जाता है कि आप थे ना इसके ऊपर निगरान, आपकी हिफाजत में ये दिया गया था ना ये पूरा इदारा, तो आप बताएं आपके ये क्यों हुआ ऐसे। ठीक है, तो मर्द औरतों पे निगरान है, इससे ही बहुत सारी बातें आपको पता चल जाएंगी, समझ आ जाएंगी। ठीक है, जरूरियात का ख्याल रखना भी इसमें आ गया, हिफाजत भी आ गया, निगेबानी भी आ गया, मामलात को चलाना भी आ गया। अब मैंने आपको जैसे मैनेजर का बताया कि इदारे में कुछ गलती होती है, कहीं गड़बड़ होती है, तो किससे पूछ होती है, उस आदमी से। लेकिन आप मुझे बताएं कि जब वो मैनेजर होता है तो इसका मतलब उसके पास कोई इख्तियारात भी तो होंगे ना, ऐसे थोड़ी होगा बस मैनेजर जुबानी बना के उसको बिठा दिया गया, उसके बाद उसके पास कोई इख्तियार ही नहीं है, अब उसने चलाना है सही इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। अगर वो नहीं चलाता तो सवाल है, ठीक है। अब क्यों कवाम बनाया गया, मर्द को ही क्यों कवाम बनाया गया, ये औरतों का बहुत बड़ा एतराज होता है। उसके दो जवाब यहाँ पे दिए गए और दोनों बीमा से स्टार्ट होते हैं। नंबर 1 बीमा फद्दल अल्लाह, नंबर 2 बीमा अनफकु मिन अमवालिहिम, ठीक है। तो ये नंबर 1 और नंबर 2 लिख लें, क्या वजह है क्यों कवाम है। बीमा फद्दल अल्लाह बादहुम अला बाद, बेवजह इसके कि जो फजीलत दी अल्लाह ने फजीलत दी है, उनके खुद ही कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ही फजीलत देने वाला होता है, अल्लाह ने फजीलत दी उनमें से बाज को बाज पर। यानी मर्द को ऐसी खसूसियात दी जो औरतों में नहीं है। अब क्या ऐसी खसूसियात, लो हम तो किसी से कम है भला, हम तो ऐसे हैं ऐसे हैं, तो मर्दों में ऐसी क्या खूबियां हो गई। देखिए कुछ ऐसी एबिलिटीज हैं जो मर्दों को दी गई क्योंकि उन्होंने चलाना है ना घरों को, उन्होंने निगरानी करनी है घर की, वो घर को कायम रखने वाला, उसके ऊपर जिम्मेदारी है घर की, तो उसको उस हवाले से उसकी अंदर कुछ अल्लाह ताला ने ऐसी खसूसियात दी है, मसलन बहादुरी कुव्वत। आप देखें एक घर के अंदर चूहा आ जाए तो फिर औरतें कैसे भागती हैं, किसको आगे करती हैं। रात के वक्त अगर कहीं खटपट हो, कहीं से कोई आवाज आए तो फिर औरत होगी तो वो तो कंबल के अंदर ही दुबक जाएगी, और आदमी होगा तो वो उठ के चल पड़ेगा कि मैं देख के आता हूँ क्या है ना। तो बहादुरी कुव्वत जुर्रत मेंटल स्ट्रेंथ है उनके अंदर, और इसी तरह उनके अंदर कुछ सख्ती है, शिद्दत होती है जिसकी वजह से वो मुश्किलात से टकरा जाते हैं, मसाइल से भिड़ जाना। औरत कहती है औरत के अंदर एक अल्लाह की तरफ से एक नेचुरल ये चीज होती है कि वो घबराती है ऐसी चीजों से, वो चैलेंजेस को नहीं लेना चाहती, उसके अंदर नरमी होती है, वो खतरात से ना भागती है कि खतरे में ना डाला जाए अपने आप। तो ये मर्द के अंदर कुछ अल्लाह ने ऐसी चीजें रखी। अच्छा अब एक बात याद रखिएगा, आप हर मर्द को इसमें हर औरत के साथ नहीं कंपेयर कर सकते कि नहीं वो फलाना मर्द तो मैंने देखा तो बड़ा डरपोक है, उसके अंदर तो कोई जरूरत नहीं है। हर मर्द जिन से मर्द की बात हो रही है, यानी अमूमी जब भी बात होगी तो एक अमूमी बात की जाती है, एवरी मैन और एवरी वुमेन को नहीं कंपेयर किया जाता, ठीक है। आप इंडिविजुअल्स को निकाल के नहीं पॉइंट पॉइंट आउट कर सकते, आप ओवरऑल पिक्चर को देखें। ओवरऑल ओवरऑल क्या होता है, एक्सेप्शनल केसेस तो देखिए हर जगह ही होते हैं ना, तो ओवरऑल क्या है आपको दुनिया में क्या नजर आता है। औरतें घर के मामलात को बेहतरीन तौर पे चला सकती हैं, वो मर्दों के काम नहीं होते। किसी के घर में औरत ना हो किसी भी वजह से तो उस घर का निजाम ही उलट पुलट हो जाता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने औरत को घर के अंदर की जिम्मेदारियां दी, मर्द को बाहर के इंतजाम की जिम्मेदारियां दी। अब ये एक गलत फहमी हो गई शायद मर्दों को, या औरतों ने भी ये सोच लिया, या इन आयतों से एक बात निकाल दी कि पता नहीं वो अल्लाह के हाँ बहुत बेस्ट हैं, कोई ज्यादा उनका मकाम और मर्तबा है। इसमें मकाम और मर्तबे की बात नहीं हो रही कि उनका मकाम बहुत ऊंचा हो गया, अल्लाह ने उनको पता नहीं ऊंचे मकाम और मर्तबे अपने हाँ दे दिए, वो हमारे से कितने ऊपर बेस्ट हो गए हैं, अल्लाह के हाँ उसके बहुत करीब हैं, ऐसा नहीं है। असल में बात यह है कि जिम्मेदारियां दोनों की डिफरेंट हैं, उन्होंने जो मामलात संभालने हैं ना उनको उस तरह की क्वालिटीज दी गई हैं। जैसे फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी के ऊपर है तो उसको कुव्वत भी दी गई। अब औरतें भी जॉब कर लेती हैं आज, ठीक है, लेकिन उनकी जॉब के बाद क्या हालत होती है, और आदमी सारी जिंदगी करता है और वो कर लेता आराम से। तो ये अल्लाह ताला ने औरत के ऊपर नहीं डाली फाइनेंशियल माली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली, उसको तो बताया कि तुम्हें तो घर बैठ के खाना है, वो ला के दे तुम्हें, वो खिलाए भी पिलाए भी पहनाए भी, दवा इलाज कोई करना है वो भी वो उसका जिम्मा है, बिल भी वो पे करे, ग्रोसरियां भी वो करे, बच्चों की फीसें भी उसने देनी है, वो खुद सोचे उसने कहां से करना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो कौन फिर सहूलत में है? और रोने देखे औरतों के इतने रोने हैं, इससे भी पता चलता है कि इंसान कोई अकल करे तो उसको समझ आए ना बात के, देखो मुझे तो बिठा के खिलाया गया, बैठ के खाने वाला ज्यादा बेहतर है कि वो जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करे, तरह तरह के लोगों से डील करे, उनकी बातें सुने। बहुत सारी औरतें फिर शेयर करती हैं कि हम जॉब करते हैं तो हमें पता चलता है कि आदमी बेचारे किन किन हालात से गुजरते होंगे। किसी ने शेयर भी किया अपना तजर्बा, उन्होंने कहा उसने सारी जिंदगी नहीं जॉब की थी, तो उसने जॉब की तो उसके बाद वो कहने लगी कि मैंने अपने हस्बैंड का आके शुक्रिया अदा किया कि आपने इतने अरसे मुझे घर बिठा के खिलाया, मैं आराम से बैठी हुई मजे से हर चीज, मेरा काम बस खर्च करना होता था, और आज मैं बाहर निकली हूं तो मुझे पता चल रहा है कि कैसे कैसे लोगों से मुझे कैसी कैसी बातें सुननी पड़ती है, कि कई जगह डांट पड़ती है, कई जगह काम सही नहीं होता तो टेंशन होती है, कभी जब घर इंसान आता है तो तब तक कितने मसले, उसके सारा दिन का थका हारा, क्या उसकी मेंटल कंडीशन होती है, क्या उसकी फिजिकल हालत हो जाती है। तो उसने कहा कि मैंने शुक्रिया अदा किया, यानी सोचें ये इंसान उस वक्त शायद रियलाइज करता है जब वो खुद उस फील्ड में जाता है ये कितना मुश्किल है। तो आदमी ने घर का सिस्टम चलाना है, इसलिए अल्लाह ताला ने उसको अथॉरिटी भी दी कि उसके अंडर ये घर सही से चलना चाहिए, उसने ला के भी देना है, उसने देखना भी है सब चीजें सही चल रही हैं इस घर में, ये तो नहीं कि औरत ही कुछ और कर रही है, वो उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो कहां से कहां फिर रही है, वो तो कोई तवज्जो ही नहीं दे रही, उसको देखना है कि सारा उसके नीचे ऑपरेशंस जितने भी हैं वो ऑपरेशन सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, बिल्कुल जैसे आप मैनेजर की मिसाल देख लें, ठीक है। तो अब वो ये आदमी की जिम्मेदारी है, अब कितनी बड़ी उसके ऊपर ये जिम्मेदारी डाल दी गई कि उससे पूछ होनी है कि ये औरत भी अगर कुछ गलत करती है ना, और कुछ गलत जगह पे घूम रही है, कहीं और अलग अलग दोस्तियां कर रही है, तो ये आदमी से पूछ है, तुम्हारे अंडर था ना ये महकमा भी, तुमने क्या किया? जैसे वजीर आजम होता है, उसने सारी चीजों को ही देखना, एक है वो एक सिर्फ चीज का वजीर है, एक है उसने पूरी चीजों को देखना है कि एंड टू एंड सारा निजाम सही चल रहा है कि नहीं, ठीक है। इस तरह जज्बाती तौर पे भी आदमी उनमें ठहराव होता है, औरतें इतनी जज्बाती हो जाती है, गुस्सा आ जाए तो तब जज्बात में, ऐसे कोई सिखा पढ़ा दे तो तब भी जज्बात में आके क्या क्या कर लेती, मर्दों के अंदर फिर भी कंपोज्ड रहते हैं अपने जज्बात को जरा संभालने की उनके अंदर कुव्वत होती है, औरतों के अंदर फौरन रोने लग जाएंगे फौरन वो जगह, ये आप देखें कि है एक बात जो कि मानने की तो हम देखते हैं अपने सामने। तो ऐसे में घरेलू जिंदगी में किसी को तो एक होना था ना कवाम, या तो औरत हो जाती या मर्द हो जाता, दो तो नहीं कवाम हो सकते थे, एक घर का एक ही मैनेजिंग डायरेक्टर होना था। अब अल्लाह ने इन खूबियों की बिना पर जो मर्द के पास हैं, क्योंकि ये जरूरी है घर का निजाम चलाने के लिए, आदमी को कवाम बनाया। अब औरत कह ले कि मैं तो बहुत बड़ी आलमा हूं, मैं बड़ी फाजला हूं, मैं बड़ी अच्छी बिजनेस वुमन हूं, या मेरे अंदर तो फलां क्वालिटीज हैं फलां क्वालिटी, तब भी कवाम आदमी ही रहेगा, ठीक है। अच्छा तो पहली आपको बात समझ आ गई, पहली जो वजह है वो क्या बयान हुई है, दूसरी वबीमा अनफकू मिन अमवालिहिम, और इस वजह से कि वो खर्च करते हैं अपने मालों में से। आप देखिए एक आदमी जब कमाता है ना, उस आदमी का कितना खर्चा होता है, एक पैंट शर्ट ले लेगा, एक जूता ले लेगा, बस इसका तो बेचारे का खर्चा इतना होता ही नहीं। आप अपने घरों में जब सारा दिन घूमती है ना, कभी इधर से इधर जाती हैं, घर कोई ऐसे करती हैं, नीट करती हैं, उधर क्लीन करती हैं, उधर डेकोरेट करती हैं, उधर जाती हैं, तो ये सोचा करें उस वक्त कि आदमी सुबह से निकला हुआ है, उस बेचारे ने तो शाम को आना है, रात को सो जाना, फिर सुबह उठ के फिर चले जाना है, सारा दिन उस घर को कौन एंजॉय करता है, सारा दिन उस घर में कौन ऐश करता है, औरत। वो घर औरत की यानी उसके उसमें है, उसके दारा इख्तियार में है, ऊपर जाए नीचे जाए इधर जाए उधर जाए, उठाए कोई चीज रखे कोई चीज, उस आदमी ने सिर्फ वीकेंड पे छुट्टी के दिन सारा दिन घर गुजारना होता है, और वो हफ्ते में एक दफा होती है, आप देखें साल भर कौन घर को एंजॉय कर रहा है, तो आदमी ने उसको लेके दिया बन। कि तू बैठ उठ खा पी सो या जो भी कर वो तो चला जाता है। तो वो खर्च करती हैं, घर बनाने में खर्चा होता है, उसके बिल्स हैं उसकी और चीजें हैं जो मेंटेनेंस है उस पे खर्च करते हैं, औरतों पे खर्च करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि आदमी की तो सिर्फ इतनी सी जरूरत है, औरतों की तो जहां से लिस्ट शुरू होती है तो फिर खत्म नहीं होती, ना कपड़ों की, ना जेवरों की, ना मेकअप्स की, ना फिर और जो सैर सपाटे और उनकी। तो वो खर्च करती हैं, और देखे खर्च करके, एक बात मैंने अपनी जिंदगी में तजर्बे से देखी है लोगों के, कि औरत थोड़ा सा भी खर्च करती ना तो कहती है हाय मेरे पैसे, मैंने अपने पैसों से किया। अच्छा मर्द खर्च करता रहता है घर पे, वो नहीं कहता मेरे पैसे। अमूमी बात कर रही हूँ, अब कोई ऐसे होंगे जो कोई एक्सेप्शनली केसेस, उन जिनकी अकल फिरी हुई हो तो उनको तो कुछ नहीं कह सकते, मगर आप ओवरऑल देखें मर्दों के अंदर नहीं ये होता। औरतें ज्यादा कहती हैं कि वो थोड़ा भी कमा के लाएंगी ना तो उनको होता है मेरे पैसे क्यों खर्च हो जाए, आदमी खर्च करता है घर पे। तो ये एक दूसरी वजह है कि अल्लाह ताला ने उसको कवाम बनाया, ये फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर डाल दी, और ये उसका कोई वो नहीं है कि वो कोई एहसान कर रहा है, मगर अल्लाह ताला ने उसके ऊपर डाली है कि उसको ये करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। औरत को अल्लाह ने कयामत के दिन नहीं पूछना कि तूने कमाई क्यों नहीं की थी, हाँ उससे उसके घर के बारे में पूछना है, उसकी रैयत उसका घर है, और मर्द को पूछा जाएगा कि वो उसने अपने घर वालों के फाइनेंस का ख्याल रखा या वो उनको दर्द दर्द की ठोकरें खाने पे छोड़ दिया कि वो लोगों से मांगते फिरे। ये आदमी की जिम्मेदारी है, वो लाए खिलाए पहनाए प्रोवाइड करे, ये उसकी जिम्मेदारी है, अल्लाह ने उसके ऊपर डाली है। अच्छा अब ये हो गया आदमी का, अब औरतों का क्या है, औरतें कौन सी, उनकी क्या क्या उनके ऊपर क्या है जिम्मेदारी। आदमियों को समझ आ गई ना, और इस वजह से अल्लाह ने कवाम बनाया। ठीक है, अब ये चीजों को अगर हम समझ जाए ना एक दफा, तो ये जो बहुत सारे झगड़े मसाइल होते हैं ना ये खत्म हो जाए। फसौलेहात, तो नेक औरतें पता है कौन सी हैं, नेक औरतों की को डिफाइन किया गया, हमने भी नेक बनना है ना, तो नेक बीबियां कौन सी हैं, नेक औरतें कौन सी हैं। अब ये यहाँ पे ये नहीं आया कि भाई वो जो नमाजें बड़ी पढ़ती हैं, तहज्जुदें बड़ी पढ़ती हैं, रोजे बड़ी रखती हैं, ये करती हैं वो करती हैं, यहाँ पे एक और तरह से घर की वो अलग नेकी है, मगर एक नेक औरत यहां से पहचानी जाती है कि वो पानीतात है। पानीतात में दो चीजें आती हैं, एक फर्मा बरदारी में दवाम, ठीक है, यानी हमेशा फर्मा बरदारी करनी है, ऐसे नहीं है कि कोई जिन मूड अच्छा हो गया तो आदमी आके मान ली, मूड खराब है तो अब सारा उल्टा सीधा करके रख दिया। खास मौके पे किसी दिन सूरज मगरिब से निकल आया तो फिर अच्छा मूड जरा है तो बेगम साहबा हाँ में हाँ मिलाने लगी, वरना हमेशा उनका मूड ही बना रहे, ये नहीं। एक तो उनके अंदर दवा में आजी में सॉरी फरमा बरदारी में, दूसरी उनके अंदर क्या है कि वो आजी रखती हैं, उनके अंदर आजी है, इनके सारी है, वो समझती हैं कि आदमी का रोल क्या है। ठीक है, और इस वजह से वो आजी से रहने वाली हैं, ठीक है ना, तो आजी भी नेक औरत की एक क्वालिटी है, फरमा बरदारी की, कहना सुने आदमी का। अब मैंने आपको बताया वो बेचारा क्या क्या सारा दिन खपता है, किस तरह घर आता है, फिर आगे एक अड़ियल औरत हो, जिद्दी औरत हो, उसका मूड ही बना रहता है, आपने ये नहीं किया आपने वो नहीं किया, मैं तो ये फिर क्या है। तो ये दो क्वालिटीज होनी चाहिए। अब आप इसमें अपने माशरे को जरा सिर्फ प्लीज देखें, हम बेटियों को क्या सिखाते हैं, हम बहनों की शादियां होने लगे तो क्या कहते हैं, हमेशा ये सिखा के भेजते हैं घर वाले, लड़की के घर वाले इसको ऐसा देते हैं, तुमने जाके दब नहीं जाना, तुमने नीचे नहीं लग जाना, देखो पहले दिन से नीचे लग गई ना तो नीचे ही लगी रहोगी, ये कहते हैं। ये कनूत का सबक है, आजी का सबक है, या नुशूज का सबक है। आगे पहली क्वालिटी कौन इतात की थी, ठीक है, इतात गुजार, अल्लाह की इतात गुजार होगी, शौहर की भी होगी। फिर जो और मैनेजर है वो ओनर नहीं है, अल्लाह ओनर है हमारा। तो ये नहीं करना कि हमें इतात गुजारी पता है कब आती है, जिस वक्त जहां पे अल्लाह का कोई हुक्म तोड़ना हो तो कह रहे थे फौरन, देखें अल्लाह का तो ये हुक्म है ठीक है आप बता रही हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड तो इस तरह नहीं पसंद करते, तो हस्बैंड को खुदा भी नहीं बना लेना, ठीक है ये भी जहन में रहे। और ना ही ये कहना है कि जे मैंने तो शौहर को जूती बना के रखना है, ये भी नहीं, दोनों के अंदर ये चीज नहीं होनी चाहिए। आदमी को भी अल्लाह ताला ने कवाम बनाया है, ये नहीं कहा कि तुम जो है तो औरत तुम्हारी जूती है पैर की, जो कि हमारे यहाँ ये इस तरह के मुहावरे मशहूर हैं। कवाम बनाया और वो इन बातों की वजह से बनाया, तो तुम ऐसा करके दिखाओ, तुम ऐसे बन के दिखाओ, तुम्हारी ये जिम्मेदारियां बता दी गई, तुमने खर्च भी करना है, और तुम्हारे तुम्हारे अंदर जो अल्लाह ताला ने ये क्वालिटीज दी हैं इसकी बेसिस पे तुमने औरत की हिफाजत करनी है, उसकी इज्जत की, उसके माल की, उसकी जान की मुहाफिज हो तुम। तो ऐसे नहीं है कि उसकी इज्जत की कोई हिफाजत की कोई परवाह नहीं है, बल्कि उसको साथ लेके जा रहे हैं, जाओ तुम मेरे बॉस से तुम मिलो और उससे बात करो, हो सकता है कि वो मेरी प्रमोशन करा दे, औरत को ही बना संवार के लेके जा रहे हो साथ, ये नहीं है। उसकी निगहबानी, उसकी हिफाजत, उसके माल की भी हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी, उसके पास कोई माल है ना उसकी भी हिफाजत करनी है, उसकी इज्जत की भी हिफाजत करनी है, ये नहीं कि उसकी इज्जत को खुद ही उछालते फिरे इधर उधर, उसकी बातें बनाते फिरे। मर्दों में बैठ के जब कोई मर्द बीवियों की बुराइयां करते हैं तो सबको समझ आ जाती है कि अपनी बीवी से कितना खुश है ना, तो उनकी इज्जतें उछालना महफिलों में बैठ के ये सही नहीं है चीज। तो वो तो क्या है, अल्लाह ने उनको बास क्वालिटीज दी हैं बास पे, और उनके अंदर ये भी क्वालिटी है तहम्मुल, और ये चीज का कि उन्होंने घर को उनके निजाम को कंट्रोल में रखना है, उसको मैनेज करना है, उसको तबाह बर्बाद नहीं करना। अब औरतों की दूसरी क्वालिटी क्या है, पहली तो आपको समझ आ गई, दूसरी है हाफिजातुल्लिलगैब। हाफिजातुल्लिलगैब को पहले समझते हैं, हिफाजत करने वाली गैब में, यानी जब शौहर नहीं है मौजूद तो उसके घर की हिफाजत करना, और सबसे पहले घर की भी छोड़े, सबसे पहले चीज जिसकी उन्होंने हिफाजत करनी है वो है अपनी इज्जत, कि शौहर घर पे नहीं है तो अपनी इज्जत की हिफाजत करे, ऐसी छुपी दोस्तियां ना लगाए, कहीं किसी के साथ बातें कर रही है, कहीं किसी के साथ मेल मिलाप शुरू हो गए, अब शौहर तो तवज्जो देता नहीं, हम क्या करें, वो तो मुझे टाइम नहीं देता, तो वो फलां है ना उसके साथ बड़ा मजा आता है, वो मेरे साथ बड़ी बात करता है, वो बड़ी मेरी तारीफें करता है, मेरे हस्बैंड तो कभी मेरी तारीफ ही नहीं की, नहीं ये नहीं चीज हो सकती, नहीं मैं कुछ गलत तो नहीं करती, मैं तो बस उसके साथ चैटिंग ही करती हूँ ना। हिफाजत करें अपनी इज्जत की सबसे पहले, दोस्तियां नहीं लगा सकते, किसी के साथ ताल्लुकात नहीं रख सकते, बॉयफ्रेंड नहीं बना सकते, हिफाजत करने वालियां होती हैं वो, क्योंकि अब उसकी इज्जत उसके शोहर की इज्जत है और शोहर की इज्जत उसकी इज्जत है, इसी वजह से राज नहीं देती किसी को, कि मैके जाके ससुराल के सारे राज उधर बोल रही हैं और उधर बता रही हैं, वो तो ऐसे हैं, वो तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर मैके वाले भी उनकी नजर में भी कोई इज्जत नहीं रहती इसके शोहर की ना उसके ससुराल की, तो अपना ही खराब कर रही होती ना घर। तो हाफिजा तुम ले लो भाई, और शोहर नहीं है तो अब फोन पकड़ा माँ को सारी बातें बता रहे, वो तो नहीं है ना उसकी गैर मौजूदगी में उसके राज फाश कर दिए, वो तो हिफाजत करने वाली होती है, हाफिजात है, राज की भी हिफाजत करती है, मामलात की हिफाजत करती है, अपनी अमिया बीवी के जो आपस के ताल्लुकात हैं उनको सहेलियों को नहीं बताती करती, आज उसने ऐसे कहा उसने वो करा, और उसके बाद फिर आप देखें कई हासिद भी इसीलिए फिर पैदा हो जाते हैं, कई बहुत उनकी बातें घर घर में एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन जाती है, और ऐसी औरतें ये नहीं सोचती कि वो अपने अपनी इज्जत भी खराब कर रही हैं और अपने पूरे खानदान की इज्जत खराब कर रही हैं। हाँ कोई बहुत ही बात हद से बढ़ जाए तो जाहिर है फिर तो किसी को इन्वॉल्व करना है, वो आगे बात आएगी, लेकिन ऐसे नहीं कि बस गपशप में ही सारे राज बता दिए। अच्छा फिर आप देखें और क्या चीज होती है जिसकी उनको हिफाजत करनी है, उसके घर की भी मुहाफिज है, वो गया हुआ उसको तो पीछे नहीं पता ये घर में क्या होने लगा, वो चीजें तोड़ रही है, फेंक रही है, लाइटें खुली हुई हैं, पानी चल रहे हैं, चीजें खराब हो रही हैं, उनकी हालत बुरी हो रही है, उसको परवाह ही नहीं। नहीं, वो घर की भी हिफाजत करने वाली, उसके बच्चों की भी हिफाजत करने वाली, ये रायत है उसकी। नौकर चौकर है घर के, वो भी उसके अंडर है इस वक्त, वो तो आदमी तो गायब है। तो ये अब पीछे से ये औरत ही है ना जो निगरान है, यानी आदमी की अगर मौजूदगी में, ये औरत है जिसके ऊपर सारा घर है। अब वो इस घर को कैसे टेक केयर उसकी करती है, कैसे वो इसकी हिफाजत करती है, ये सारी औरत से पूछ है अल्लाह के हाँ। एज बीवी उसकी ये जिम्मेदारी है, इस घर के अंदर जितने अफराद हैं वो भी अब उसकी जिम्मेदारी है। चाहे अब वो कोई सास है, चाहे अब वो कोई नंद है जो अनमेरिड है, चाहे कोई है, अब वो उसके साथ रहते हैं, अब एक घर के अंदर रह रही है, इसकी जिम्मेदारी है। वो अब इनकी भी जो भी इनकी देखभाल है या जो उनके साथ की जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करें उनको। तो ये हाफिजात में आके हिफाजत करने वाली है उसके घर की, उसके माल की, उसके बच्चों की, उसके उसके राजों की, अपनी इज्जत की, ये सब है हिफाजत में आती चीजें। अब वो इसको घर छोड़ के गया ना, अपना घर इसके हवाले करके गया ना, ये हम कहते हैं ना घर वाली, बिल्कुल अप्रोप्रिएट वर्ड है, घर वाली। घर वाली औरत ही होती है, घर वाला तो नहीं किसी को कहते हम, आदमी को तो नहीं घर वाला कहा जाता, हम कहते हैं घर वाली। अब जब मर्द भी कोई बात करते हैं बीवी के, तो वो क्या कहते हैं, मेरी घर वाली। वो घर वाकई उसके सुपुर्दी होता है सारा, किसने उसको देखना है, चलाना है, करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके अंदर क्या लाना है, क्या चीज की जरूरत है, क्या चीज खत्म हो रही है, ये सारी चीजें उसने देखनी है। कोई लीक हो रही है चीज, कोई और कोई चीज की खराबी हो रही है, ये उसकी जिम्मेदारी कि वो इन चीजों को टेक केयर करे। ठीक है, अमूरे खानदारी सारे इसके अंदर आ गए। और इज्जत की बात को तो आपने समझ लिया ना अच्छी तरह, बीमा हाफिज अल्लाह, साथ उसके जो हिफाजत की अल्लाह ने, यानी क्या मतलब इसका, अल्लाह की मदद के साथ वो ऐसा करेगी। दूसरा माना क्या है, अल्लाह ने हुक्म दिया है। ठीक है, अल्लाह ने हुक्म दिया है तो इसकी हुक्म के मुताबिक, अल्लाह पहला मतलब क्या, अल्लाह की हिफाजत से निगेबानी करने वाली, उसकी मदद से निगेबानी करने वाली है, वो घर की हिफाजत करने वाली है। और दूसरा माना अल्लाह के, अल्लाह ने हुक्म दे दिया उसको तो तब करती है। तीसरा माना अल्लाह की हिफाजत में औरत अपनी हिफाजत करेगी, यानी वैसे तो हिफाजत करने वाला अल्लाह ही है ना, हम तो नहीं कह सकते हमको हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने ही औरत पे जिम्मेदारी डाली। अब इसके अंदर वो ये भी आ जाती है सारी कि भाई जब औरत की जिम्मेदारी घर है तो मर्द को सुकून का माहौल घर में दिया जाए। जब वो घर आए तो आप घर की निगेबान वो है, ऐसा माहौल बनाए कि उसको सुकून मिले यहाँ पे। तो अब ये औरत, नेक औरत कौन सी है जो ये करेगी सब। अब आगे आता है जहां पे मसला बहुत ऑब्जेक्शन खड़ी होती है, वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना। पहले तो बात को हम समझें कि किन औरतों की बात हो रही है जिनका तुम डरते हो। नुशूज, नुशूज कहते हैं खड़े हो जाने को, फन शूज हुआ है ना सूरह मुजादला में, कि जब तुम्हें कहा जाए कि खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाया करो। तो नुशूज क्या है असल में, कहते हैं ये उस सवारी को जो अपनी पीठ पे सवार को बैठने ना दे। अब देखते हैं ना कई दफा कोई घोड़े ऐसे होते हैं उनके ऊपर कोई बैठने लगता है, उठा उठा के उसको मारते हैं, इस तरह करते हैं, काबू में ही नहीं आते, पटक के रख देते हैं सवार को। तो कई औरतें भी इसी तरह की होती हैं, वो आदमी को भी लताड़ के रख देती है, वो किसी के काबू में आने वाली ही चीज है, वो तो खुद बहुत बड़ी चीज खुद को समझती है। तो नशिया साहब कहते हैं खड़े हो जाना, इससे ही आपको पता चलेगा कि कैसी औरतें, यानी जो बगावत पे उतर आए, जिन्होंने बात समझनी नहीं, बागी हो गई। अब किसी सेंस में भी ले लें, ये बगावत ये नहीं होती कि आदमी ने कहा कि मेरा जरा मुझे पानी का ग्लास देना, तो औरत ने कहा मैंने नहीं देना, तो अब ये बगावत हो गई, तो अब ये सारे स्टेप शुरू हो जाएंगे, ये नहीं है बगावत। बगावत अपनी इज्जत के मामले में भी हो सकती है, आदमी कहे कि भाई फलान से नहीं मिलना तुमने, फलान मैं उसको नहीं पसंद करता, तो वो कहे नहीं जी मैं तो मिलूंगी, मैं आप कौन होते मुझे मना करने वाले, मैं तो बहुत अड़ जाए इसके ऊपर। नुशूज चढ़ाई को भी कहते हैं कि औरत मर्द के खिलाफ मुहाजराई शुरू कर दे, उसके खिलाफ उसके आगे खड़ी हो जाए, और बात मान के ही नहीं दे रही। अब कहा गया कि वो तो कानितात होती हैं, ये नुशूज करने वाली है। सरकश हो जाना, निभाई नहीं करना, आदमी को बुरा समझना, नीचा समझना, उसकी बदखोइयां करना, यानी उसके मुकाबले में खड़ी हो गई है ना। जो वो मुकाबले में जितनी चीजें आ जाती हैं वो सारी इसमें। यहाँ ये भी उलमा ने कहा है कि इसमें ये भी आता है कि मर्द को हकूक ज़ौजियत ही ना देना कि मेरी मर्जी है। जैसे आज वो कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, शादीशुदा है तो कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जब आपने निकाह किया था तो उस वक्त आपने किस चीज पर साइन किए थे? निकाह के अंदर ये मौजूद है कि आप आदमी को यह हक देते हैं अपने जिस्म का, वो अलग बात है। कोई औरत बीमार है या कोई, तो आदमी को भी कंसिडर करना चाहिए। लेकिन आप ये कोई कहे कि नहीं जी मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये तो मर्जियां की अब बात ही नहीं रह गई। ये नुशूज है फिर, ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली जो बात है ना, ये है नुशूज। तो जिनसे तुम डरते हो नुशूज से, अब ऐसी औरतों के लिए पहला स्टेप जो आदमी लेगा वो ये नहीं है तलाक तलाक तलाक, चली जाओ घर से, धक्के मारे वो निकाल के रख दिया। कई औरतें रोती हैं और कहती हैं देखो हमारी क्या हक है, हमारा इस्लाम ने तो क्या हमें हक दिया है। आदमी 3 बोल बोलता है और हमें घर से बाहर खड़ा कर देता है। हालांकि ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं, नुशूज कर रही है औरत। और फिर भी क्या कहा गया, फायदू हुन्ना, उनको नसीहत करो, समझाओ बुझाओ, देखो इस तरह से नहीं है, देखो हदीसें सुनाएं, कुरान सुनाएं, उनको तलकीन करें, उनको कोई लेक्चर दें, उनको किसी के लेक्चर में ले जाएं, वहां पे बिठाएं, कहीं कुछ मतलब ऐसी नसीहत की बातें उनको करें। वाज वो नसीहत होती है जिसमें दिल को नरम किया जाए। और ये गालियां देना वाज नहीं होता, ताने मारना वाज नहीं होता। वाज हमेशा याद रखें, वाज में होता है खुदा का खौफ दिलाना, और प्यार मोहब्बत से होता है वाज, शफकत के बर्ताव के साथ वाज होता है, जिसमें दिल नरम हो जाए। आप तो थप्पड़े मारने से थोड़ी दिल नरम हो जाता है। अपने हकूक का एहसास दिलाए, कुछ करे, कुछ कोई बात बोले उसको, ताकि इसका नुशूज खत्म हो जाए, कि तुम कुछ समझ करो। देखिए ना, याद रखें खानदानी निजाम ना ऐसे ही नहीं चलता, उसमें ना दोनों को बड़ी सोच समझ के चलना पड़ता है। मर्द की जिम्मेदारियां, औरत की अपनी जिम्मेदारियां। अब शादी का मतलब ये नहीं होता कि औरत अपने आप को बिल्कुल खत्म करके मर्द के अंदर बिल्कुल ऐसे हो जाए कि कुछ है ही नहीं उसकी, और वो बेचारी बिल्कुल ही खत्म हो गई है। नहीं, मगर ये एक यूनिट है जिसको चलाने के लिए दोनों के अंदर वाहम हमदर्दी के जज्बात होने चाहिए। एक फरीक भी ये ना सोचे नाराज होता तो होता, फिर मुझे क्या, मेरी जाने बला, खुद ही ठीक हो जाएगी। ना मर्द ये सोचे ना औरत ये सोचे, जाए तो जाए भाड़ में जाए, मुझे क्या, ये नहीं कर सकते आप, बेपरवाह नहीं हो सकते। आपको केयरिंग होना पड़ता है इस रिलेशनशिप में। किसी दिन कोई मनाए, एक मना ले, दूसरे दिन दूसरा मना ले, इस तरह गिव एंड टेक से जिंदगियां चलती हैं। और एक अकड़ जाए, नहीं तो मैं तो बस बात ही नहीं माननी, मैंने तो कुछ करना ही नहीं, मुझे क्या, जो मर्जी करें, जो मर्जी कहता रहे, मैंने नहीं इसकी बात सुननी। हाँ नाजायज कोई बात कर रहा है, अलग बात है, मगर ऐसे करके अकड़ जाना ये दुरुस्त रवैया नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या बताया, फरमाया खुतबा हज्जतुल विदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमियों से अल्लाह ताला से डरते रहा करो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, वो तुम्हारी खिदमत गुजार हैं, मातहत हैं, यानी तुम्हारे अंडर हैं। अब देखिए ना, एक औरत की शादी हो गई, अब वो तो बंद गई एक आदमी के साथ ना, उसके अंडर हो गई, अब वो तो नहीं जाके कहीं ना शादी कर सकती है ना कहीं, है ना, वो कोई आजाद है, वो तो इसके नाम के साथ बंद गई है, इसके घर की हो गई, उसने अपना घर छोड़ दिया इसके लिए। तुम्हारा हक इन पर यह है कि जिसके आने जाने से तुम खफा हो उसको ना आने दे, ठीक है? यानी आदमी का यह हक क्या है कि अगर वो किसी को नहीं पसंद करता कि मेरे घर में आए जाए, तो वो औरत उसको ना आने दे। अच्छा, अब ये बात फिर नशूज में आ जाती है कि वो कहे कि मैं नहीं ये बात समझूंगी, मैं ना मानू चाहे जो मर्जी करे। तो उनको वाज करो, समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? बहुत अहम आयत है, इसको समझना बहुत जरूरी है, आप औरतों के लिए भी आदमियों के लिए भी। वाज करो, आदमी वाज नहीं करते, उधर चुटिया पकड़ी, उधर घर से बाहर, तलाक तलाक तलाक, उसके बाद कहते हैं हाय अब कैसे होगा, अब तलाक एक हुई है कि तीन हुई है, अब क्या हो गया, उस वक्त मैंने गुस्से में दे दी उस वक्त। वो तुम्हें तो अल्लाह ने बाज को बाज में जो फजीलत दिया उनमें ये भी है कि ये नहीं कि औरत को क्यों नहीं ये दे दिया गया तलाक का हक, वो तीन दफा तलाक कह के वो भी फारिग हो जाती, अपने आप को कर लेती, लेकिन अल्लाह को पता है वो जज्बाती है। अगर आदमियों ने भी वही काम करने हैं जज्बाती वाले, तो फिर उसमें और उसमें क्या फर्क रह गया? तो नहीं, तुमसे हिकमत, तहम्मुल, तदब्बुर, इस चीज को एक्सपेक्ट किया जाता है। अब वो नुशूज कर रही है, अब आदमी अगर गुस्से वाला है वो तो उठा के फेंकेगा। कहा गया नहीं तुमने वाज करना है, इसके लिए तहम्मुल चाहिए कि नहीं चाहिए, बर्दाश्त चाहिए ना? वो ये करने लगी भी, अकड़ने लगी भी, ऐसे महाजराई कर रही, उसको वो वाज करे। अच्छा वाज करता रहे, अगर वो इससे नहीं फिर भी समझ उसको आती, इतनी अड़ियल औरत है, होती है ना बाज उजड़ किस्म की होती है, बस नहीं ही मानना मैंने, वह जुर्म ना फिल्म दौजी, तो क्या करो, छोड़ दो उनको उनके बिस्तरों में। अब इसके बारे में भी कहा गया कि ये मतलब है कि आदमी रहे तो वहीं, अपना बिस्तर वहीं भी बिस्तर पे सो, उसी बिस्तर पे सोए, लेकिन उसके साथ कलाम ना करे, अपनी करवट बदल के लेट जाए ना, उसे बातचीत करे ना, उसको उसके साथ उसका हक जौजियत ना दे। ये औरत के लिए बड़ा ही ये भी उसके लिए एक सजा होती है, क्योंकि आदमी उसको लिफ्ट नहीं करा रहा, जिसको कहें लिफ्ट नहीं करा रहा, और औरत तो खुश इस पे होती ना कि आदमी उसके पीछे पीछे फिरे, उसको इससे कुछ चाहत है। तो अब वो अपने ताल्लुकात, जिनसी ताल्लुकात इसे बिल्कुल कट कर देता है, घर से अभी भी नहीं निकालना, यानी कि अब तुम ये नहीं, तुम मानी मैंने तुम्हें इतना समझाया, चलो निकल जाओ, नहीं, ताल्लुकात खत्म कर दिए, अपने दूसरी जगह जाके सो गया या उसी जगह सो रहा है, और ये कट ऑफ कर दिया। अच्छा अगर फिर औरत ऐसी है कि फिर भी उसको नहीं समझ आती, तो लेकिन ये वाजुरुहुन्ना वाली एक बात, एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं, वाजुरुहुन्ना का मतलब ये नहीं कि अब आदमी ने बिस्तर बदला है या करवट बदल के लेट गया तो अब ये चलता ही रहेगा और साल हर साल इसी तरह चल रहा है कि वो दूसरे कमरे में सोता है ये उधर सोती, क्योंकि उसको किसी किसी बात पे नाराज किया, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये भी फिर जुल्म होगा आदमी की तरफ से, क्योंकि बाज घरों के अंदर ऐसा ही चलता है कि अरसे अरसे तक, साल हा साल हो गए, आपस में ताल्लुकात ही खत्म है, ना बोलते हैं ना चलते हैं ना कुछ है, कोई नाराजगी आपस में, और बस इसी तरह चलता जा रहा है। नहीं, मुफस्सरीन कहते हैं 1 महीने तक इसकी इजाजत है, बाज ने कहा मैक्सिमम मैक्सिमम 4 महीने तक इसकी इजाजत, 4 महीने के बाद वो औरत के साथ आए और उससे ताल्लुक कायम करे, 4 महीने से ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। अच्छा अब ये भी नहीं चला, अब ये भी हरबा नाकाम हो गया, और अब क्या किया जाए? तो अब यहां पे जाके आता है वद्रिबूहुन, तो आप मार सकते हैं उनको, लेकिन कौन सी मार मार सकते हैं, कैसी मार मार सकते हैं, क्या उसको आप बाजू तोड़ दें, उसके सर के बाल खींचे हैं, उसको पीटें, कई औरतें शिकायत लेकर आती हैं और कहती हैं कि इतना हमें मारा है, और मतलब ऐसा मारा है कि उन्होंने, फिर जाहिर है फिर निशान भी पड़े मुंह पे, लोगों ने भी देखा, लोगों को भी पता चला, फिर वो बेचारियां अपनी छुपाती हैं और बहाने करती हैं कि किसी और ने, कहीं और गिर गई थी, ये हो गया था। फरमाया नहीं, मारने का मतलब ये नहीं है कि अब उसको थपड़े और ऐसे मारना शुरू कर दो, मारने का मतलब जो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो मुफस्सिर कुरान है उन्होंने क्या बताया कि मारने का मतलब क्या है, मारना कोई सजा के तौर पे नहीं मारा जा रहा, बल्कि आप इस बात को इस तरह से समझें कि यानी उसको शर्म दिलाने के लिए कि देखो तुम ये क्या कर रही हो, अकल करो। तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि ये मार कैसी है, जैसे मिसवाक से कोई इंसान अपनी बीवी की पिटाई करे, मिसवाक अब क्या होती समझ ले, जैसे आप टूथब्रश पकड़ लें, ऐसे जैसे ऐसे करके उसको मारा, कि यानी एक बड़े के लिए, एक एडल्ट के लिए इतना ही काफी होता है ना कि कोई उसको इस तरह से करके करे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको बेइज्जती फील होगी। ये है बदरी पूनम। और मुस्लिम की हदीस भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा हज्जतुल विदा में फरमाया, लोगों औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, तुमने उनको अल्लाह की अमान में हासिल किया है और अल्लाह की इजाजत से उनके जिस्मों को अपने पर हलाल किया। अब निकाह क्या होता है, अल्लाह का नाम लेके एक औरत ने अपना आप सपुर्द कर दिया आदमी के, तुम्हारा उन पर यह हक है कि वो तुम्हारे बिस्तरों पे उसको ना आने दे जिसको तुम ना पसंद करते हो। अगर वो ऐसा करें तो उनको इस तरह मारो कि चोट का निशान ना पड़े, यानी ऐसी ऐसे नहीं मारना कि नील पड़ गए हैं कहीं सर में, कहीं बॉयल्स हो गए हैं, कोई कुछ हो गया है या बाजू तोड़ दी है, और उनका तुम पर ये हक है कि तुम उनको जो मारूफ तरीका है उसके मुताबिक खिलाओ पिलाओ पहनाओ। ये है, तो ये नहीं है कि जो आज इस चीज का मतलब समझ लिया गया है कि बस जो मर्जी करते रहे हम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की बंदियों को मारा ना करो। फिर हजरत उमर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि औरतें अपने खामदों के साथ इतनी बदतमीजी करती हैं, इतनी बदजुबानी करती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इजाजत दे दी कि ठीक है तुम हाथ उठा सकते हो। फिर बहुत सारी औरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत लेकर आ गई खामदों की कि ये तो हमें मारने शुरू हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जब ये शिकायत सुनी तो फरमाया कि ये लोग जो ऐसे करते हैं ना, ये तुम्हारे अच्छे लोगों में से नहीं है, ये तुम्हारे अच्छे लोगों में से नहीं है, ये फरमाया, यानी इस चीज को डिस्करेज किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में औरत तो छोड़े किसी नौकर तक को, गुलाम तक के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी है कि कोई अपनी बीवी को इस तरह से ना मारे जैसे कोई अपने नौकर को, गुलाम को मारता है, फिर दिन गुजरने के बाद उसी से जमा करे कि उसके बाद फिर रात को जाके उसी के पहलू में लेट जाता है, फिर उसी से ताल्लुक कायम करता है और सारा दिन उसको ये मार पिटाई उसकी शुरू की हुई, अजियतें उसको दे रहा है। तो इसीलिए मुफस्सरीन कहते हैं कि अगर बीवी की कोई अजियत है तो उसको बर्दाश्त करना और उस पर सबर करना उसको उसको मारने से अफजल है, इल्ला ये कि कोई नाकाबिले बर्दाश्त ही ऐसा मामला हो जाए तो तब इतनी तक इजाजत है। अब इसके बाद मुझे बताएं यहां पे क्या हो रहा है इन मुल्कों में जिनको तरक्की याफ्ता सिविलाइज्ड पढ़े लिखे लोगों के मुल्क कहा जाता है, यहाँ पे आप डोमेस्टिक वायलेंस के, ये जरा स्टैटिस्टिक्स आप जरा गूगल कीजिएगा, आप देखें जरा कि क्या स्टैटिस्टिक्स है, कितनी औरतों को मारे पड़ती हैं और हत्ता के वो जहनी मरीज बन जाती हैं। उनको ऐसे होता है कि हम इसी काबिल हैं कि हम मार खाएं, तो ये हमें सही मारता है अब मारा करे हमें, उनकी इज्जत नफ्स खत्म हो जाती है, वो खुद कोई कहीं कॉल नहीं करती हैं, किसी को बताती नहीं है और मारे सारी जिंदगी खाती रहती हैं। इस्लाम थोड़ी ये कहता है। और इस आयत को पॉइंट बना के ये करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सारी अहादीस को एक तरफ डाल देना और बस कहना ये देखो कुरान में तो ये लिखा हुआ है, ये कुरान पाक के अहकाम का अल्लाह की बात का मजाक बना लेना, डरना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मर्दों को हज्जतुल विदा में फरमाया कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, फरमाया क्या कि औरत पसली से पैदा हो। अब इस बात आप चीज को भी ना आदमी बहुत मजाक बनाते हैं कि देखा तू पसली से टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, इसको सीधी करने की कोशिश करो कि सीधी नहीं, यानी अल्लाह ने जैसे इसकी साख्त बनाई है, जब इस चीज के ऊपर मजाक करते हैं तो फिर अब उसके बाद उस चीज को बर्दाश्त भी करना चाहिए कि अब हम छोटी मोटी बातों के ऊपर इतना बड़ा इशू ना बना ले कि उसके ऊपर कहें कि हम अब इसको मारने का कोई बहाना तो मिले हमें। देखो तो कुरान ने तो कहा ना मार सकते हैं, तो फिर मिसवाक से आप भी पकड़ के मारे, लेकिन पहले ये स्टेजेस की हैं, फाइजुन्ना वाहजुरुन्ना, और क्या वो नुशूज करती थी या छोटी छोटी बातों को इशू बना लिया जाए। पर फरमाया इन अतानकुम, फिर अगर वो इताअत करें तुम्हारी फला तबगू अलैहिन्ना सबीला, अब अगर वो मान गई हैं, अब उन्होंने अपना नुशूज छोड़ दिया है, चाहे फर्स्ट स्टेज पे छोड़ दिया चाहे सेकंड पे चाहे थर्ड पे आके उनको बात समझ आ गई, तो अब तो वो तुम्हारी इताअत कर रही है, बात मान रही है, तो तुम मत तलाश करो बहाने के, अब मैं किस तरह कोई ऐसा मेरे हाथ कोई इशू आ जाए कि मैं उसको बुनियाद बना के और इसको जरा लगाऊं, इसको जरा अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह माफ करे, क्योंकि मेरे पास तो इतने मसाइल आते रहते ना औरतों के, अल्लाह ताला हमें माफ करे। कि एक बहन ने कहा कि वो उनके हस्बैंड कहते हैं कि मेरे हाथों को खुजली होने लगती है, मुझे कुछ ना कुछ तुम्हें मारना है तो फिर ही मुझे चैन आएगा। तो ऐसे आदमी मेंटली सिक होते हैं, वो अपनी बीमारी, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली सही नहीं होते ना, तो वो इस वजह से मारपीट करते हैं। वो ये नहीं होता कि वो औरतों का कोई कसूर होता है तो, लेकिन उनकी उनके साथ कुछ ना कुछ बचपन में कुछ ऐसा वायलेंस हुआ होता है, या कोई ऐसे हादसा या कुछ ऐसी चीज होती है उनकी जिंदगी में जिसकी वजह से वो ऐसी एबनॉर्मल हरकत करते हैं। वरना कोई नॉर्मल आदमी, ये नॉर्मल लोगों की बात हो रही है, एबनॉर्मल लोगों की बात नहीं हो रही। तो कोई इस आयत को बुनियाद बनाकर अपने आप ये फ्री हैंड ना समझे कि मैं जितना मर्जी मारूं, मुझे तो अल्लाह ने इजाजत दे दी है। तो मैंने आपको सही से बता दिया कि अल्लाह ताला ने क्या बात फरमाई है, किस तरह से अल्लाह ताला ने बताया। आप सोचिए, एक औरत आई आप के पास, तो उसने कहा कि मेरे पास दो रिश्ते आए हैं, गालिबन फातिमा बिनत कैस थी मेरे ख्याल में, तो दोनों में से मैं किसके साथ शादी करूं। तो आप ने एक का तो बताया कि उनका क्या मसला था, दूसरे के बारे में फरमाया वो बड़ा सख्त आदमी है, हर वक्त उसने लठ कंधे पे ही रखी होती है, यानी वो सख्ती करने वाला है, तो उसके साथ ना करो। तो हजरत जैद के साथ फरमाया था कि उनके साथ कर लो। तो ये इससे पता चलता है कि हर वक्त घर के अंदर एक फिरौन या जिल्लाद बने फिरते रहना, ये कोई अच्छी पसंदीदा बात नहीं। वरना आप सरम कहते हैं उसके साथ कर लो, तुम उसका रिश्ता तुम्हारे पास आया हुआ। नहीं, मेरे ख्याल उसामा बिन जैद के साथ आपने फरमाया था कि कर लो। बाहर कैफ बाप भी अब बेटे में से मुझे कोई गलती लग रही, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके साथ कर लो, उसामा के साथ, लेकिन इसके साथ ना करो, ये सख्त आदमी है। तो अल्लाह ताला ने औरतों को इनके बारे में फरमाया कि ये तुम्हारे सुपुर्द की गई है अल्लाह की अमानत के तौर पर, तो अमानतों का तो हिसाब होना है। अगर वो कुछ गलत करेंगी, कोई अपनी इज्जत के ऊपर कोई धब्बा लगवाएंगी, कहीं कोई गलत काम कर रही हैं और आदमी नहीं उनको देख रहा, और आदमी ने उनको फ्री हैंड दिया हुआ, किसी भी मर्दों के साथ दोस्तियां लगाती फिरे, उसके ऊपर भी आदमी से पूछोगी, और अगर आदमी इनके साथ ऐसा कोई मामला करता है उस पर भी पूछोगी, ठीक है। तो अच्छा, नुशूज में एक और बात भी है, ये भी बताया गया कि नुशूज ये भी है कि फाहिशा मुबैना करें, वो फहाशी की बात ऐसी करें कि जो नाकाबिले बर्दाश्त हो आदमी के लिए, तब भी ये स्टेप्स हैं। इसके अलावा कोई और नहीं स्टेप बताया गया, इसके अलावा कोई और चीजें तुम कर सकते हो। जब भी कोई ऐसी बात होगी तो फिर इन स्टेप्स को इस तरह से फॉलो किया जाएगा, और वो भी जब उनकी बगावत हद से ज्यादा बढ़ जाएगी तब उनके साथ ये मामलात किए जाएंगे। बाकी औरत के लिए भी बहुत बड़ी बातें बताई गई कि उनके लिए भी कितना नेक औरत तो वो है कि जब वो फरमा बरदार है और जब आदमी उसकी तरफ देखे तो उसको खुश करते हैं। नहीं, ऐसी है, उसके अंदर ऐसे गुण हैं, ऐसी बातें हैं, ऐसी ऐसी उसके अंदर क्वालिटीज हैं कि आदमी उसका शौहर उसकी तरफ देखता है तो उसको खुश कर देती है। ये कि बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो ऐसा औरत को, चाहे वो अपने किसी सुगड़पने की वजह से कर रही है, चाहे वो अपनी अपने आप को बना संवार के इतना रखती है कि आदमी खुश हो जाता है उसकी तरफ देख के, चाहे कोई भी इस तरह की कोई बात हो सकती है, मगर जब आदमी उसकी तरफ देखे तो वो उसको खुश कर दे, ये भी एक नेक औरत, एक अच्छी औरत की क्वालिटी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक औरत को मता फरमाया कि दुनिया का बेहतरीन मता क्या है, एक नेक औरत। नेक औरत दुनिया की बेहतरीन, जो जितनी भी फायदे की चीजें हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा फायदे की चीज अगर किसी को कोई नेक बीवी मिल जाती है तो ये एक फायदे की बहुत बड़ी, उसको अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत मिल गई है, ये भी कहा गया है। तो अब यहां से हमें पता चल गया कि औरतों की क्या हकूक और फराइज हैं और मर्दों के क्या हकूक और फराइज हैं, ये भी हमें यहाँ से बखूबी अंदाजा हो गया। अच्छा, मैंने ये आपको जैसे बताया कि नुशूज का मतलब छोटी मोटी बात नहीं है, कि छोटी मोटी अगर कहीं मसलन किसी का किसी दिन तबीयत में कुताहट आई भी है, आगे पीछे वो ऐसी नहीं है, लेकिन आज उसको कोई ऐसा मसला हो गया है, ऐसी कोई ऊंच नीच हो गई है, तो तब भी ये उठ के जो थप्पड़ मारने लग जाना या ये करना, ये दुरुस्त नहीं है। इवन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो गुलामों के भी बारे में फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक सहाबी ने पूछा कि मैं दिन में कितनी बार अपने नौकर को माफ करूं, कितनी दफा अपने गुलाम के दरगुजर करूं, तो आपने फरमाया 70 दफा। 70 दफा तो कोई गलती भी नहीं करता होगा,
नौकर को भी फरमाया कि 70 दफा भी वो गलती करे तो उसको माफ कर दो। तो 70 एक नंबर बताया गया, मतलब है कि बहुत दफा। तो बीवी तो नौकर के बराबर नहीं है, वो तो अल्लाह के नाम पे उसको अमानत के तौर पे लिया गया, उसकी अल्लाह के नाम की वजह से हकूक ज़ौजियत आदमी को मिले। तो अब इस बात को समझना चाहिए, और अगर इसके ऊपर कोई प्रोपोगंडा करे तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जवाब क्या है। इन अल्लाह कान अलियन कबीरा, अल्लाह ताला बुलंद है और बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अगर आदमी को ये सोचता है कि वो औरत के साथ ज्यादती करके और फिर वो कोई नहीं उसको पकड़ेगा, तो याद रखो कि तुम अगर उसके ऊपर जोर रखते हो ना, तो तुमसे एक बड़ा है जो तुम पे जोर रखता है, ठीक है? इसलिए बहाने ना तलाश करो फिर उसको मारने के, तंग करने के, और उसको उसके बारे में ऐसी बातें करने के। आप देख रहे हैं कि कितनी तफसील है इन अहकामात में। नमाज के बारे में, नमाज का हुक्म बहुत जगह है कुरान में, लेकिन इतनी डिटेल कहीं पे भी नहीं आई। रोजे की डिटेल नहीं है, हज की डिटेल नहीं है, लेकिन घर कैसे सही से चले, फैमिली मैटर्स, फैमिली यूनिट को बचाने के लिए कितनी डिटेल आई है। क्योंकि अगर यहाँ पे खराबियां आ जाए ना, तो घर खराब हो जाते हैं, घर खराब होने, बच्चे खराब हो जाते हैं, फ्यूचर उस माशरे का खराब हो जाता है। जब घर टूटने लगेंगे तो माशरा ही खराब हो गया ना सारा। घर घरों के अंदर औरतों को मारा जा रहा है, कहीं आदमी ज्यादती कर रहे हैं, कहीं औरतें नशूज पे उतरी हुई हैं, कहीं औरतें हाफिजात नहीं है, कहीं औरतें कानितात नहीं है, कहीं मर्द ऐसे हैं कि वो बस बहाने ढूंढते हैं कि हमें किस तरह से हमें मारने का मौका मिले। तो जब घरों के अंदर इतनी बेचैनी होगी, तो याद रखें वो घर तक नहीं महदूद रहती। वो ही आदमी जो घर से सताया हुआ निकलेगा, वो जाके क्या जॉब करेगा, वो बिजनेस में कैसा होगा, वो किसी के साथ भी बात करेगा, किसी क्लाइंट के साथ भी, तो वो मुंह से उसके क्या फूल झड़ेंगे? नहीं, उसकी मेंटल हालत क्या होगी? इसी तरह जो औरत वो मार खाती है घर के अंदर, वो आदमी के जुल्मों सितम का शिकार हो रही है, उसको दिन रात एब्यूज किया जा रहा है, उसको ताने दिए जा रहे हैं, वो एक मेंटल केस बन चुकी है, वो क्या अपने बच्चों की तरबियत करेगी? वो घर को क्या देखेगी? वो घर के क्या काम काज करेगी? उसकी मेंटल हालत ही सही नहीं है, तो वो क्या, वो एक हेल्दी पर्सन नहीं है, वो उसके मामलात क्या होंगे दूसरों के साथ फिर? ये ना चेन रिएक्शन है, ये एक जगह पे खत्म नहीं हो जाता। वो फिर अपने हमसायों के साथ क्या करेगी, अपने दोस्तों के ऊपर किस तरह बरसेगी, वो अपने ससुराल के साथ क्या मामला करेगी, वो अपने बहन भाइयों के साथ किस तरह से डील करेगी, वो तो हर एक के साथ तोप बन जाएगी, वो तो सबको एक ही निशाने पे लिए रखेगी, उसके भी मुंह से फूल नहीं चढ़ेंगे फिर। तो ये यहाँ पे नहीं खत्म होता, फिर बच्चों के ऊपर अब्यूज शुरू हो जाती। वो औरत जो घर की सताई भी हो, जो वहां से मार कर रही हो, तो बच्चों को आगे फिर मारती है। तो ये बहुत जरूरी है कि घर पुरसकून हो। घर पुरसकून होंगे, माशरा पुरसकून होगा। एक रिपल इफेक्ट होता है, ऐसे वेव्स होती है ना, आप समंदर में देखते हैं, एक वेव बड़ी आई तो उससे आगे और बड़ी, फिर और आगे से आगे बनती जाती हैं। इसी तरह एक पुरसकून पर्सन अपनी पॉजिटिव एनर्जी आगे देता है, उससे आगे पॉजिटिव एनर्जी, वो अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छा होगा, वो अपने घर जाएंगे वो वहां अच्छे होंगे, फिर वो अपने दोस्त है बाप से मिलेंगे वहां अच्छे होंगे। लेकिन यहाँ से अगर घर से कोई आदमी निकला है गुस्से में और वो घर के कई कामों से तंग है, तो बताएं वो आगे जिस जिस जगह पे जाएगा वहां पे जहर उगलेगा, और यही हाल औरत का होगा। तो ये फिर आगे चीजें फैलती हैं, ठीक है? ये जरूरी है कि हम अपने घरों को पुरसकून बनाएं, एट एनी कॉस्ट पुरसकून बनाएं, चाहे कोई बात दूसरे की माननी पड़ती है, कुछ अपनी मर्जी छोड़नी पड़ती है, कहीं दिल नहीं करता, ठीक है, खुद को बदलना पड़ता है, अल्लाह के अहकामात के सामने नहीं, वैसे कोई चीज ऐसी है नहीं उसको पसंद आती तो ठीक है छोड़ दी, जाने दिया उसको, अगर उसे कोई कयामत नहीं आ रही तो। कहीं आदमी कॉम्प्रोमाइज कर ले के चलो ठीक है, अब इतना ये कह रही है तो ठीक है इसकी बात मान लो, अगर नाजायज तो नहीं कह रही ना, कोई जायज ही मुतालबा है, अपने माँ बाप को मिलने जाना चाहती है, या कुछ ऐसी बात है, कोई ऐसा तो नहीं, कोई गुनाह थोड़ी कर रही है, चलो वो थोड़ा अपना अपने आप को थोड़ा लचक दिखा ले, कोई नहीं। इन चीजों से घर बनता है,
ये नहीं कि ये सिखाएं हम भी दूसरों को और हम खुद भी ये ठान के बैठ जाएं, मैंने अगर एक दफा मान ली ना, इसने तो सर पे ही चढ़ जाना, फिर तक ना फिर एक और बात होगी, फिर एक और बात आएगी, मैंने भी मान के नहीं देनी, मैंने सर पे नहीं चढ़ाना। ये अकड़े जो है ना, ये छोड़ देनी चाहिए मेको में, आदमियों को भी छोड़नी चाहिए और औरतों को। आदमी मगर काम ही होता है कि वो अपनी अकड़ छोड़ते हैं, उनके अंदर एक अना और वो चीज होती है, तो औरतें हैंडल करें हिकमत के साथ, काम भी कराना है लेकिन उसकी अना को भी नहीं ठेस पर पहुंचानी। ठीक है, इसी मैं सोच रही थी बहुत दिन से ही कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ खुशहाल घराना की टिप्स कुछ शेयर की जाए हर एक क्लास के बाद इंशाल्लाह ताला, तो अल्लाह हमारे घरों को पुरसकून बनाए, इन पे सकीनत तारी फरमाए, मर्दों को भी हिकमतें दें और उनके भी तहम्मुल अता फरमाए, और औरतों को भी समझ और हिकमत अता फरमाए। वह इन खिफ तुम शिका का बईनी हिमा, अगर डरो तुम इख्तलाफ से, दुश्मनी से, बईनी हिमा, इन दोनों के दरमियान, अगर तुम्हें लगता है ना कि नहीं ये तो बात ना बहुत बढ़ रही है, पानी सर से गुजर रहा, शिकाक, शिकाक का मतलब होता है फट जाना, शक हो जाना होता है ना, गैप पड़ रहा है यानी फूट पड़ गई है, अब लगता नहीं है कि ये मिलके रहेंगे, औरत नशूज में है और आदमी जो है वो अपनी जिद नहीं छोड़ा, उसकी सख्ती इतनी ज्यादा है, उसके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है, वो बड़ा गुस्से का तेज है, अब क्या पैचअप के लिए करें। अभी भी ये नहीं कहा तलाक 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 चलो जाओ अपने घर, अभी भी नहीं, सारी चीजें हो गई, सब कुछ कर लिया लेकिन बात कुछ बन नहीं रही, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, तो क्या करो फिर आप। फबअथू हकमन मिन अहली व हकमन मिन अहलिया, देखिए अब घर से बाहर बात गई है, ये नहीं है कि पहले ही मरहले पे आदमी मर्दों में बैठ के औरतों को बेइज्जत करे, बीवियों के ऊपर बातें बनाए कि ये तो ऐसी हैं, ये तो ऐसी हैं। आज के दौर में ना ये किस चीज को इतना ज्यादा यानी गंदा कर दिया गया है, आप कभी नहीं देखेंगे कोई कार्टून्स, कोई लतीफे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के, आप हमेशा देखेंगे औरत को दिखाया होगा बेलना हाथ में पकड़ा हुआ और वो गुस्से के अंदर चीख रही है, कार्टून बने होते हैं, लतीफे आप औरतों के देखेंगे इस तरह के, बीवियों के, तो ये हमने इस फैमिली यूनिट को इतना गंदा कर दिया कि आज इसीलिए जो नई जनरेशन, हम कहते हैं हमने शादी नहीं करनी, शादी क्या एक मुसीबत है, तो ये तो बड़ा प्यार मोहब्बत का तो लिबास कहा गया, ये लिबास है, ये नहीं है कि अब उसके ऐब आदमी बयान करना शुरू हो जाए घर से बाहर, ये तो ऐसे करती है, इसका तो नुशूज ये है, ये तो ये करती है, और बीवियां ऐसे होती हैं और ऐसे, उस नुशूज को तुम घर में वाज करो ना उसको, फिर छोड़ दो बिस्तर, फिर वधरी बुहुन्ना, फिर अगर नहीं मामला सॉल्व होता तो अब है कि अब तुम एक हकम बिठाओ उसकी फैमिली से और एक हकम अपनी फैमिली से, या हकम भी वो होने चाहिए जो कोई सेंसिबल लोग हों, अकलमंद लोग हों, अगर औरत अपनी माँ को हकम बना के बिठा देगी तो माँ तो अपनी बच्ची की साइड लेने से कभी नहीं हटेगी, ठीक है, या वो अपनी माँ बाप को बिठा ले, वो कभी भी अनबायस नहीं हो सकते, वो हमेशा तरफदारी करेंगे, तो कोई अकलमंद, कोई समझदार, कोई नेक, कोई ऐसा इंसान जो कि पैचअप कराना चाहता हो, बाज दफा हकम ही ऐसे होते हैं बेअकल कि वो भी कहते हैं कि नहीं तुम्हें तो तोड़ना ही चाहिए ये घर, ये तो कोई इसका भी नहीं आदमी, इसे पीछा छुड़ाओ, ये ऐसे आदमी को कहते हैं ये तो औरत है ही ऐसी, तुम क्या इसके साथ लगे हुए हो, छोड़ो इसको, तो हकम भी अपनी सहेलियों को ना बना लें, अपने ऐसे लोगों का ना समझदार होना चाहिए, ठीक है, तो एक उसकी फैमिली से समझदार, एक उसकी फैमिली से समझदार बंदे वो बैठें, इस मामले को देखें, गौर फिक्र करें, दोनों की बात सुने, अल्लाह ताला ने फरमाया इन युरीदा इस्लाह युवफ़िक़ अल्लाहु बैनहुमा, अगर वो दोनों चाहेंगे ना इस्लाह करना, कौन दोनों, हकम या फिर मियाँ बीवी भी हो सकता है, कि अगर वो इस्लाह करना चाहते हैं, वाकई इनका ये है कि हमने पैचअप करना है, तो अल्लाह ताला कोई ना कोई सूरत मुआफ़त की बना देगा, कोई ना कोई काम बन ही जाएगा, कहीं सुलह सफाई हो ही जाएगी, कुछ गिव एंड टेक होगा, कुछ शर्तें वो रखेगा, कुछ शर्तें ये रखेगी, कहीं ना कहीं आपस में मिल ही लेंगे, अब वो हकम भी बैठे में, वो भी गवाह हैं, वो भी वॉच करेंगे कि हाँ दोनों फॉलो करते हैं इस चीज को, अब आपने हमें हकम बनाया था, तो हकम बेजा तरफदारी करने वाले नहीं होने चाहिए, और हकम ऐसे होने चाहिए जो इंसाफ के साथ बात करें, जो सबकी भलाई देखें, ये नहीं कि वो कोई वकील नहीं है कि हमने ये मुकदमा जीत के रहना, जीत मेरी होनी चाहिए और मैंने इस आदमी को लेट डाउन ही करना है, वो नहीं हकम है, ठीक है, इसमें जीत हार की कोई बात नहीं थी। याद रखें, एक फैमिली के अंदर ना, जहां पे भी मियां बीवी के मामलात होते हैं, वहां पे हार होती है, जीत कुछ नहीं होती। कोई एक फरीक समझता है ना, हमने इसको दबा लिया, हम मुकदमा जीत गए, जीत जीत नहीं होती। जब घर टूटता है तो हार ही हार है। इन अल्लाह क्या ना अलीमन खबीरा, अल्लाह ताला इल्म वाला है, खबर रखने वाला है, उसने अपने इल्म की बदौलत तुम्हें ये अहकामात दी है। उसको पता है, वो खबीर भी है, उसको पता है किसकी नीयत क्या है, किसकी नीयत जोड़ने की और किसकी नीयत तोड़ने की, पहले दिन से तोड़ने की नीयत।